مشورے کی اہمیت کا مزید معلوم ہوا کہ اپنے لیے عمل کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہلکا نہیں جاننا اور وہی کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. جی ہوپ فلی آن لائن پہ آواز کلیئر ہوگی, کوئی اگر مسئلہ ہو تو لکھ دیجیے گا. اب ہمیں دین کے راستے میں جو مشکلات آئیں ہمیں اس سے نکلنا ہے اور ہم سب کو اس قابل کر دے کہ قرآن کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی. انشاءاللہ اپنے اندر کے انسان کو جگانا ہے اور وہ خوشی پیدا کرنا ہے جو روزے جزا رب کے حضور حاضر ہوں تو میرے چہرے پر بھی اس کے اثرات نظر آئیں. آمین. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ نیت کو صاف کر کے دل کو صاف رکھیں اور کانسٹنٹ سٹرگل میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور اس کے اوپر محنت کرنی ہے. صبر اور نماز کو زندگی میں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ نے فیل کیا کہ یہاں صبر اور نماز کا جو تذکرہ آیا ہے نا, اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. ہم نے سبق میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء میں دو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں, ایک حب جاہ اور ایک بولی حب مال. حب مال اور حب جاہ دونوں کا فرق سمجھتے ہیں؟ حب مال کیا ہے؟ مال کی محبت. ٹھیک ہے, جب کسی بھی قوم کے اندر مال کی محبت آ جاتی ہے نا تو اس کا علاج کیا ہے بتائیے. آپ کے سامنے لکھا ہوا اس آیت کے اندر جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, حب مال کا علاج صبر ہے, قناعت کرنی پڑے گی, صبر کرنی پڑے گی. اور حب جاہ بڑا بننے کا احساس جو ان میں آ گیا تھا نا, اس کا علاج نماز میں, کیونکہ بندہ رب کے آگے جب باجز ہوتا ہے تو پھر بندوں کے آگے بھی آتا ہے. تو آج اگر آپ کو بھی اپنے اندر کبھی یہ بڑائی کا احساس نظر آئے تو فوراً سجدے میں چلے جائیں اور اپنی ناک کو زمین سب کچھ ہے. آج کا سبق ہے اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے. جو پڑھا ہے اس کو اپنی زندگی میں بخوبی چلنے کے لیے, صبر اور نماز قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے انشاءاللہ. نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یہ رب سے ملنے کا ذریعہ ہے. ہمیں اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. بنی اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں اچھی طرح سے علم ملا, صبر اور نماز سے مدد لینی ہے. اللہ سے ملاقات کا یقین گمان ہمارے دلوں میں خوشی اور خضوع ڈالتا ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہے. ٹوڈے آئی لرن اباؤٹ دی ہسٹری آف یہود اینڈ ہو ہیو بین بنی اسرائیل, یعنی ان کو ہسٹری کی بات جو انہوں نے پڑھی سنی اس سے فائدہ ہوا. انگلش کے لوگ تو کل بہت تھے, کمنٹ صرف دو ہیں بلکہ ایک, کیا وجہ؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ ایک اور کمنٹ ہے جو ان سسٹر نے دیا کہ میں اس کو اردو میں پڑھتی ہوں, ویسے انہوں نے انگلش میں دیا. کہتی ہے کہ جب کل میں گھر گئی تو میں نے ایک چارٹ بنایا اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ جو کچھ میں نے اس کلاس سے سیکھا ہے اس کو لکھوں. اس چارٹ میں وہ کہتی ہے کہ میں نے مختلف خانے بنائے, ایک ایمان کا, اسلام, مومن, منافق, مسلم, فاسق اینڈ متقی, اینڈ ایٹ دی باٹم آف ایچ کالم, یعنی ہر نام لکھ کے وہ ہر کالم کے نیچے میں نے ہائی لائٹ کیا وہ دن کہ جس دن میں نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. یعنی اپنے اندر جو چیز بھی آئے گی اور سننا جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب جو بھی صحیح راستہ ہے اور سنت کا راستہ ہے اور اس کو لینا. خلاصہ یہ کہ انہوں نے اپنے چھوٹا سا چارٹ بنا لیا ہے, روشنی میں اب اپنے اندر یہ خوبیاں خامیاں جو ہے یہ ڈھونڈنی ہے. حقیقت بھی یہی ہے, جب تک ہم کڑی نظر اپنے اوپر نہیں رکھیں گے تب تک ہمارا کام جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. اسی طرح یہ کچھ لوگوں نے ایکٹیویٹیز بنائی ہے, الحمدللہ کچھ کوشش کی آپ لوگوں نے. یہ متقین کے بارے میں, ایمان اور ایمان کی خوبی, ایمان والے ہوتے ہیں, ایمان کی بالغیب کی پانچ چیزیں, پھر انجام کیا ہے مفلحون, اسی طرح کافر, کفر, ان ساری چیزوں کا جو چھ چیزیں تھیں اور ان کا انجام جو ہے وہ عذاب عظیم ہے. پھر یہ شکر گزار اور ناشکر انسان کی کریکٹرسٹکس ہے. شکر گزار جو ہے وہ جو مل جائے اس پہ راضی ہے, ہر دل عزیز ہوتا ہے, بہت کم طور ذہنی مریض ہوتا ہے, ہر حال میں خوش ہوتا ہے, نفسیاتی طور پہ بیمار نہیں ہوتا اور بہت کم بیمار ہوتا ہے اور لوگوں کی تعریف کرتا ہے. اور ناشکر انسان کی خوبیاں خامیاں, شکوے کرنے والا, دکھی, مظلومیت کا شکار, لوگوں کو اس پر ترس آتا ہے, تانے دینے والا اور لوگ اس کو ملتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ سورۃ الفاتحہ میں تھیم کیا تھا. اسی طرح یہ ایکٹیویٹی ہے, منافق, اعتقادی اور عملی, علامات کیا ہیں, قول حرکت آزاد, دھوکے باز, شعور سے خالی, اگریسو ہوتا ہے, نفاق کیا ہے, دو چیزیں, شبہات اور شہوات, یعنی یا شبہ میں بڑھ جاتا ہے یا شہوات میں, اور وجہ کیا ہے, نفاق کی جو روٹ کاز کیا ہے وہ رسول کی ذات ہوتی ہے. قربانیاں نہیں کرنا چاہتے دین میں, مفاد پرست ہوتے ہیں, شعور سے نفاق का रास्ता इख्तियार करते हैं। दीन के शौरी तौर पर फसाद करता है, अबदी जहन्नम है, दुनिया में तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। अल्लाह ताला इनको मोहलत दे रहा है, शायद से अपना अमल बदल लें। हकीकत है कि अल्लाह ने अभी पूरी तरह नहीं पकड़ा। इसी तरह हुदा लिल मुत्तकीन पे एक्टिविटी है कि मुत्तकी कौन है, जिनकी ये खूबियाँ हैं, और आखिर में फिर इनका अंजाम है। कम से कम आप देखिए कि जहन को उलटते पुलटते रहेंगे तो अंदर हवा लगेगी ना। कोई चीज़ एक दफ़ा घर में रख दें तो उसको कीड़े ही लग जाता है। हमारे दिमागों को बाज़ दफ़ा बिल्कुल दीमक खा जाती है जब हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। फिर इस तरह इन्होंने कुछ इसमें कुछ करने की कोशिश की है कि सारी बातों का खुलासा तस्मिया की बातें और सूरह फातिहा, यानी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये जो भी मतलब हाईलाइट पिन पॉइंट्स हैं, ये इन्होंने किए हैं। तो अच्छी बात है, इसके अंदर कम से कम इंसान दिन ब दिन बेहतरी जब करता जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आइडियाज़ अच्छे होते हैं, सिर्फ उसको डिस्प्ले करना होता है। फिर इन्होंने कुछ सिमिलर वर्ड्स और मीनिंग्स अब लेसन 6 से लिखे हैं, लीमा और बीमा, औफू से उफी। अब इन्होंने अपनी अपनी समझ से लिखे है ना कि कुछ की साउंड की वजह से सिमिलर है, जैसे फरहबूनी को इत्तकूनी, तन सोना ततलूना ताकिलून, ये साउंड एक है। फिर आप देखिए राकेन खाशेन, इनका वजन एक है। फिर इसी तरह माकुम और अलैकुम, यानी याद करने के लिए अब जो मर्जी टूल इस्तेमाल करें, जो तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन हकीकत यह है कि जितना गौर व फिक्र करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इन चीजों से फायदा भी हो। सोचा बाद में जाके आपने कुछ गौर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब आज का सबक शुरू करके फिर कल की कुछ चीजें आज साथ चलेंगी, इसलिए कि कल का सबक और आज का सबक, बल्कि अगले कई सबक जो है ये एक ही कौम की कहानी है। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें इन आयात का हक अदा करने वाला बना दे। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلا سبق شروع کریں گے ہمارا آج کا سبق جو ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر کیا بولتے ہیں اردو میں کیا بولتے ہیں 47 से 59 तक है, आयत नंबर 47 to 59 सूरत अल बकरा। आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसका मेन थीम क्या है। जैसा कि हम रोज देख रहे हैं कि किसी भी पारे को, किसी भी सबक को शुरू करने से पहले अगर हम उसका बुनियादी नुक्ता समझ जाएं तो बात समझनी बहुत आसान होती है। आज के सबक का अगर आप मेन नुक्ता लिख लें तो माजी के मुसलमानों को खिताब दोइम, दूसरी बार खिताब किया जा रहा है माजी के मुसलमानों को, और माजी के मुसलमान दोबारा उनको नेमतों का ख्याल और फजीलत की बात की। पिछले हिस्से में हमने नेमती की पे बात की थी, आज के सबक में हम डिटेल से देखेंगे कि फजीलत क्या दी गई थी और उनको दी गई, क्या हमें नहीं दी गई, या अगर आज हमें भी अल्लाह ताला ने ये फजीलत दी तो क्या फिर हम इस पे गौर व फिक्र करते हैं। जो बुनियादी नुक्ता है ना वो समझ लीजिएगा कि बनी इसराइल ने जब अपनी किताबों में तब्दीलियां की, बल्कि उनके उलमा, उनके जो बड़े बड़े आलिम थे, उन्होंने तब्दीलियां की, तो उन तब्दीलियों में एक बड़ी तब्दीली क्या की कि आखरत का कॉन्सेप्ट तौरात में से निकाल दिया, और जहां जहां जन्नत की बात है उसने जन्नत को, उन्होंने जन्नत को फलस्तीन से जोड़ दिया। आज भी आप सुनते होंगे फलस्तीन को क्या कहते हैं ये लोग, लैंड ऑफ द रिवर्स ऑफ मिल्क एंड हनी, यानी जन्नत सूरत मोहम्मद में नहरों का तस्कर आता है कि जन्नत में नहरें होंगी। इनके उलमा ने लोगों को दुनिया को जन्नत बनाने का इतना खूबसूरत क्राइटेरियन दे दिया कि आखिरत की जन्नत जो थी इनके अंदर से निकल गई। अब हुआ क्या कि अकीदा आखिरत एक ऐसा अकीदा होता है कि जो बंदे के अंदर को सीधा रखता है। सिंपल सी बात है, आप सब यहां आते हैं, अगर रूल्स ना हो, बाद में जवाबदेही का ख्याल ना हो, पकड़ का या दूसरों के सामने शर्मिंदा होने का ख्याल ना हो, तो हो सकता है आप भी बहुत कुछ अपनी मर्जी से करने लग जाए। तो पीरों पे लफ्ज ईमान आया, यूमिनून बिल गैब, लेकिन जहां आखिरत की बात हुई तो वह बिल आखिरत हम यूकिनून, वहां भी वही बात थी, यहां भी ये बात है। अकीदा आखिरत बंदे को सीधा रखता है, जैसे आप सामने नजर रखते हैं ना स्क्रीन पे, अब जब किसी कौम का अकीदे आखिरत बिगड़ता है तो उनकी जिंदगी का तौर तरीका बदल जाता है। इन्होंने नाम तक तो अकीदे आखिरत रखा हुआ था और सिर्फ नाम का अकीदा फायदा नहीं देता। जैसे आज हम कहते हैं कि हम आखिरत को मानते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आखिरत को क्या मानते हैं? वहां क्या होगा, कैसे होगा? इनके उलमा ने इतनी जसारत की, इतनी कोशिश की कि इन्होंने कुछ ऐसे अकायद घड़े कि जिससे लोग सुकून से गुनाह करते, अपनी मर्जी की बातें करते, सूद में डूबे हुए थे, नाफरमानियां करते, जब आखिरत की बात आती तो कहते चूंकि हम नबियों की औलाद है, हजारों में हमारे पास नबी आए, बस ये नबी आएंगे क्यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे, हम इनकी सिफारिश से बख्शे जाएंगे। एक अकीदा इनमें ये बिगड़ गया। फिर इसी तरह इन्होंने सोचा कि यहूद के जो मुख्तलिफ गिरोह है ना, कुछ अमीर ग्रोह थे, कुछ गरीब थे। एक सोच इनके अंदर क्या पैदा हो गई कि अमीर यहूदी जो मर्जी करें, गरीब यहूदी इनके बसम में जाके पकड़ाए, जिसको हमारे यहां आप कह लें कि करे कोई और भरे कोई, कि मालिक जो मर्जी करे, गुनाहों पे सारा उसका वबाल पड़ जाएगा। इसी तरह इन्होंने अपने बुजुर्गों से, यानी जो नेक लोग थे, उनके साथ कुछ इस किस्म के अकायद घड़ लिए थे कि जब वो मर जाते हैं ना तो उनका अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट रब्ता हो जाता है, और जब रब्ता उनका अल्लाह से हो जाता है ना तो जो वो कहते हैं अल्लाह उनकी जरूर मानता है। तो लिहाजा अब आप मुझे जो बताइए, आपके बच्चे को जो पता है कि साल के बाद जब इम्तिहान होना है, कोई टीचर उनकी जगह नंबर लगा देगी, किसी दूसरे बच्चे के जिसने बहुत मेहनत की उसके पेपर इसको और इसके पेपर उसको दे दिए जाएंगे। सच बताएं कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ के स्कूल जाए, कितने बच्चे हैं जो पढ़ेंगे? वही इनके साथ हुआ। इस हिस्से में हम देखेंगे कि अकीदे आखरत में खराबी का इंसान के अमल पे क्या असर पड़ता है। अल्लाह सुबहान तआला इनको इसका मैसेज दे रहे हैं। आयत 48 में आप देखेंगे कि अपना बोझ खुद उठाओगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आयत 47 का अगर आप मेन थीम लिखना चाहें तो अजमत रफ्ता को आवाज दो, तुम कल क्या थे, आज तुम क्या बन गए हो। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें बनी इसराइल की 40 साल से जायद अरसे की हिस्ट्री का जिक्र है। कल मैंने थोड़ा सा बनी इसराइल का आपके सामने जिक्र कर दिया था, बात वाजे दोहराएंगे जरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे। उनके कितने बेटे थे? एक का नाम क्या था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इस्माइल के साथ बचपन में क्या वाक्या पेश आया? मक्का में छोड़ दिया गया। इसराइल जो हजरत इसहाक थे, उनके बेटे का नाम क्या था? याकूब अलैहिस्सलाम का लकब क्या था? इसराइल। इसराइल का क्या मतलब होता है? अल्लाह का बंदा। किसका लकब था ये? याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? उनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? उसकी निस्बत से उस दौर के लोगों ने खुद को क्या कहलाया? क्या कहलाया? यहूदी कहलाया। हजरत यूसुफ भी उनके बेटे थे। कितने टोटल बेटे थे उनके? 12 थे। उन 12 से क्या हुआ? 12 से ये 12 के 12 बेटे बने। अब आज का जितने सबक में ये मैं हिस्ट्री में आपको हिस्सों में करके सुना रही हूं, अब इस हिस्से से हमें समझ आएगा कि बनी इसराइल मुल्क, अच्छा कहाँ रहते थे हजरत इब्राहिम? मुल्क शाम में थे। हजरत मूसा कहाँ रहते हैं? मिस्र में। फिरौन कहाँ था? मिस्र में। बनी इसराइल थे शाम में, ये मिस्र में कैसे आए, उसी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। 12 बेटे थे हजरत याकूब के। इनमें से कुएं में डालने की कोशिश की कि हमारे रास्ते से निकल जाए ये कांटा। अल्लाह जिसको बचाए उसको कौन छोड़े, कौन रखे चखे, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकलवाकर, शाम के कुएं से निकालकर कनान नाम की एक छोटी सी बस्ती थी जहां के ये, जहां ये सब लोग रहते थे, मिस्र के तख्त पे पहुंचा दिया। वो सारे स्टेप्स हम पढ़ेंगे सूरत यूसुफ में। वहां एक कहत पड़ा, उस दौर में कनान के इलाके के पूरे इर्द गिर्द में कहत पड़ा। इस कहत के सिलसिले में मिस्र के लोगों के पास अनाज था, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी तरह से प्लान किया। ये सारे सबक आगे जाके पढ़ेंगे। हुआ क्या कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपने भाइयों और बाप से हुई, तो फिर हजरत यूसुफ ने उनको इधर ही बुला लिया। तकरीबन 65 लोग थे उस वक्त बनी इसराइल में, जो हजरत यूसुफ के तवस्सुत से मिस्र में आ गए। अब जाहिर है कि शाही मेहमान थे, इज्जत मिली, खूब मिली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, यहाँ कुछ अरसा इनको उरूज मिला। इल्म भी था, सलाहियत भी थी, काम करने वाली कौम नहीं थी, क्योंकि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। हुआ क्या कि हजरत यूसुफ के दुनिया से जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में भी इनका जवाल शुरू। आज मिस्र में ये आइंदे बन गए, लेकिन अपने बुरे करतूतों से एक वक्त आया कि मिस्र के अंदर एक और खानदान, जिसके बादशाहों का नाम फिरौन होता था, उन्होंने कब्जा किया, और ये शाही खानदान जो था ये गुलाम बन गया। रूज और जवाल कहते ना, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये जो कौमों के रूजो शब्द जवाल होते हैं ना, इसके पीछे हिस्ट्री होती है। बनी इसराइल के अंदर खूबियां मौजूद थी, लेकिन अपने कुछ बुरे मामलात की वजह से ये हुकूमत कह लें कि तख्त से उतर कर तो ये तख्ते पे चढ़ गए, जेल में आ गए। जब ये वहां आए, फिरौन नाम का एक खानदान था, वो मिस्र पे हुक्मरान बन गया। एक बादशाह था फिरौनियों का, जिसको इमारतें बनाने का बहुत शौक था। दो फिरौनियों के नाम हमें मिल जाते हैं, एक रामसीस II और एक मिनफिता। मिनफिता भी कुछ कहते हैं, कुछ उसके प्रोनाउंसिएशन से फर्क पे भी कहते हैं। इसको शौक था कि वो इमारतें बनवाए, और उस दौर में इस तरह से मशीनी काम तो नहीं होते थे। चुनाचे यही जो अब मिस्र के लोग, जाहिर है वो 65 आए थे लोग, तो बढ़ते गए ना खानदान, वक्त के साथ एक कौम बन गई। इनसे वो जबरन मजदूरी करवाता, उनको पकड़ता कभी कुछ। नतीजा क्या हुआ कि बनी इसराइल का मुश्किलात का दौर शुरू हो गया। कल तक एक बादशाह के रिश्तेदार थे, लेकिन आज क्या हुआ कि गुलाम हुए। बहुत ज्यादा जुल्मों से सितम बढ़ा, इतना ज्यादा जुल्मों से नस्लें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसी दौरान क्या हुआ, अल्लाह का हुक्म देखिए। ये आज के पूरे सबक के बाद अगले भी सबक का खुलासा है इंशाल्लाह। जब आयतें पढ़ेंगे तो आपको फिर बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। फिरौन जो उस दौर का था, उसने ख्वाब देखा, जिसकी ताबीर उस दौर के लोगों ने क्या बताई कि बनी इसराइल जो अब तुम्हारे गुलाम या तुम्हारे वर्कर्स हैं, तुम्हारे कमी कमीन है, इनके खानदान से एक बच्चा पैदा होगा और वो तुम्हारा तख्ता उल्टेगा। अब आज के दौर पे इसको लेके सोचे तो ये कितनी बड़ी धमकी थी। फिरौन को तो हाथ पांव पड़ गए। पहले तो कहते हैं कि उसने पकड़ के कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे हाथ में इख्तियार है, पकड़ के किल 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 किल, जो लड़का पैदा उसको मार दो। दाया जो थी खवातीन की सूरत में, वो मुख्तलिफ दाया खवातीन थी फिरौनियों की, जो घरों में हिसाब रखती थी, जहां जिस घर में बच्चा पैदा होता, बेटा होता, तो उसको ज़िबा कर देते, बेटियों को नहीं करते थे। इसका तذکرہ आगे आएगा। नतीजा क्या हुआ कि बनी इसराइल की नस्लें टूटने लगी। हर उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या करें। तो फिर फिरौन ने एक नया कानून पास किया, और वो क्या था कि ऐसा करते हैं कि हम 1 साल के पैदा हुए बच्चों को जिंदा रखेंगे, दूसरे को मरवाएंगे। वो आयत के साथ थोड़ा सा जिक्र कर दूंगी। किस्सा मुख्तसर यह है कि फिरौन बनी इसराइलियों का ये हालात बड़े तंग थे। आप कह लेंगे ये कैद का दौर था, तंगी का दौर था, गुलामी का दौर था। इस दौरान बनी इसराइल अल्लाह से जुड़े, क्लोज हुए, क्योंकि मुश्किल में इंसान को अल्लाह याद आता है। इन्होंने ऐसा रहनुमा भेज जो हमारी मदद करे और हमें इस गुलामी से निकाल दे। अल्लाह ने इनकी दुआ सुनी। एक बच्चा एक औरत के घर में पैदा होता है, बनी इसराइली है। पहले उस औरत के घर में एक बच्चा पैदा हो चुका है, हारून उसका नाम रख दिया। वो उस साल पैदा हुआ जिस साल बच्चों को नहीं मरवाया जाता था, उस बच्चे पे किसी की नजरें ना आई। एक बच्चा और पैदा हो रहा है, जो उस साल पैदा हो रहा है जिस साल बच्चों को मरवाया जाता है। अल्लाह ताला ने उस औरत को अपने वादों पे यकीन दिला के कहा कि जब तेरे घर बच्चा पैदा हो तो तू गम ना करना, बस तू इसको अपना दूध पिलाती रहे, और जरा खतरा महसूस हो कि दुश्मन आ रहे हैं, फौज के लोग, तो तू एक दरिया में छोटी सी टोकरी में रस्सी बांध के इसको छोड़ दे, मैं इसको बचा लूंगा। यही हालात हुए। किस्सा मुख्तसर यह है कि उस औरत ने यही किया। एक दिन जल्दी में रस्सी बांधना भूल गई और वो बच्चा जो था दरिया के अंदर तैरते तैरते दरिया के दूसरे किनारे पे फिरौन के महल के आगे आके रुक गया। जब उधर मलका जो भी फिरौन की बीवी थी, हजरत आसिया थी या कोई और औरत थी, उसने निकाला, बच्चा बड़ा खूबसूरत लगा फिरौन को। फिरौन ने देखा तो उसकी छठी किसने काम किया होगा, हो ना हो ये वही बच्चा जिसको फिरौन जिसको जो मेरा तख्त उल्टेगा। लेकिन वही बात है कि अल्लाह जो काम करना चाहता है, अल्लाह को मेरे और आपसे डरता है ना उस बिला। अल्लाह ने उसी बच्चे को फिरौन के घर में रखा, मूसा कहते ही पानी से निकले हुए को है। यानी लफ्ज मूसा जो है ना, इसके दो मानी अलावा, तो वो मूसा अलैहि सलाम उस वक्त बन गए, ये थे वो हजरत मूसा। बचपन सारा फिरौन के साथ पला, उसके घर से इधर चीजें, वो सारी कहानी आगे हम सुनते रहेंगे। यहाँ सिर्फ थीम पे रहिएगा कि मूसा अलैहि सलाम जवान हुए, पले बड़े, एक ऐसा वाकया हो गया जिसकी बुनियाद पे बीच में 10 साल के लिए मिस्र से वो चले गए। अब आप सोचिए कि वो दिन जब बनी इसराइल गुलाम थी कितनी परेशान होगी। ये तो वही दिन याद कर लेना आप, 47 से पहले के मुसलमानों के हालात। अल्लाह कोई राहबर हो, कोई रहनुमा हो। मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने नबुवत दी, वापस आए मदियन से मिस्र 10 साल रहने के बाद, और अल्लाह ताला ने एक बड़ी जॉब दी कि अब आपने जाके दो काम करने हैं। लिख लें ये बात आज, ये आपने कई दफा सुननी है आगे जाकर मेरे मुंह से भी इंशाल्लाह, कि हर नबी की आमद का एक ही मकसद होता था कि उस कौम, उस दौर की जो कौम है उसकी इसलाह। मूसा की आमद के दो मकासद थे, टू पर्पस थे मूसा की प्रोफेटहुड के। नंबर एक, बनी इसराइल को आजाद कराओ, बात वाज़े। गोया कि आप कह लें सियासी तौर पे मूसा अलैहि सलाम को एक काम असाइन किया गया कि ये आपको इस कौम की, किसी भी कौम की मदद करनी है और आपने इनके साथ चलना है। ये जब काम हो जाएगा, इसके लिए फिरौन से जाके बातचीत करनी पड़ती कि भाई तुमने इनको क्यों गुलाम बना रखा है, इन्होंने तुम्हारा क्या किया है। इसी काम को किया, याद रखिए मूसा अलैहि सलाम का पहला टारगेट फिरौन था। उस वक्त तौरात नहीं थी, सिर्फ एक काम था कि बात करो भाई हमसे। मूसा एक लीडर थे, सियासी लीडर थे, और मूसा की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग थी। किस्सा मुख्तसर, कहानी क्या हुई, मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन को जाके चैलेंज किया। अल्लाह ताला की रहनुमाई पे मूसा अलैहि सलाम चलते गए और बड़े प्यार से, नरमी से, अल्लाह ताला कहते नरम बात करना, लयिनन कौलन, शायद वो समझ जाए, शायद उसको बात समझ आए। तकरीबन 40 साल तक ये अरसा चलता रहा। उनकी गुलामी थी, इधर से मूसा की इनके साथ कहानियां थी। फिरौन को नहीं मानना था, फिरौन नहीं माना। जब ये हालात हो गए कि अब ये बात सीधी तरह से नहीं होती, और कोई भी जालिम हुक्मरान एकदम तो नहीं कहता जाओ तुम सारों को ले जाओ, अल्लाह ताला ने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइलियों से कहो कि मिस्र में रहते हुए अपने घर जरा अलग बनाने शुरू कर दें, कि समंदर के किनारे पे आ जाएं, ताकि कोई कोई ऐसी मूवमेंट हो तो लोगों को पता ना चले। कुछ अरसा ऐसे ही कहानी हुई, अपने घरों को किबला रुख बना लो। एक रात अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल पड़े। क्या, अब देखते हैं फिर क्या होता है। ये ऐसी है जैसे किसी के सारे गुलाम या कैदी आजाद करा के ले गए, बड़ा मुश्किल टास्क था। लेकिन नबियों को अल्लाह ने बड़े बड़े काम करने के लिए रखा होता है, वो ये सारे काम करते हैं। नतीजा क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल निकली और लाखों की तादाद में थी। चुपके चुपो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि खबर फैल गई महल में कि ये तो आपके सारे लोग ही आजाद करा के लेके जा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि फिरौन और उसके लाओ लश्कर भी पीछा करने लगे क्योंकि ये हमारे घर, हमारे कैदी जा रहे हैं। अल्लाह का करना देखिए कि मूसा जा रहे हैं तो आगे समंदर है या दरिया है, अब क्या करे, पीछे दुश्मन आगे समंदर, अब तो बड़ी मुश्किल है। हमें तो ये छोटे छोटे काम रुलाते हैं ना, हाय बस अब नहीं, टू मच, इट्स टू मच, हमारे अंदर से आवाजें आती है, इट्स वी कैंट गो फर्दर, दैट्स इट। आप देखिए हमारे तो रास्ते में भी समंदर भी नहीं आया कि जिसमें जान डालनी है। अब मूसा ने पूछा अल्लाह मैं क्या करूं, कि कोई बात नहीं, मेरे वादों पे इतबार करो, अपना असा जो है इसके अंदर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरिया या समंदर के अंदर असा लगाया तो अल्लाह का हुक्म, देखिए आप कहते हैं हमारे काम कैसे होंगे, अल्लाह जो काम कर रहा है वो ये छोटे हैं कि हमारे काम बड़े हैं। ये काम बड़े समंदर के अंदर रास्ता बन गया। यो कत्तौदिल अजीम के लफ्ज आते हैं, आप पढ़ेंगे सूरह शोरा में। इधर का पानी इधर फ्रीज हो गया, जम गया बर्फ, इधर इधर बन गई। ये सरवे कलीम थी कि रास्ता बन गया, कहा गो हेड चलो, रास्ता बना। मैंने बहुत याद किया इस वक्त को। मुझे अभी पिछले 1-2 माह पहले ही लंदन से फ्रांस जाने का इत्तेफाक हुआ, आप लोगों को भी शायद किसी तक बात हो। तो आपको पता है कि जब यहाँ से बाय रोड जाते हैं तो बीच में समंदर आता है, तो फिर वो आपको समंदर में से यूरो टनल में से निकालते हैं। तकरीबन 40 मिनट के करीब पानी को भी बंद कर देते हैं, एसी भी बंद। पूरा वक्त मैं और मूसा थे, और मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, वो तो समंदरों में से गुजरे, हम तो फिर भी चलो कुछ नहीं। बंदे का दिल तो घबराने लग जाए अगर वो सोचे कि मैं हूं किधर, मेरे ऊपर इतना पानी है। लेकिन अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं ना, तो मूसा के लिए रास्ते बने और मूसा और बनी इसराइल समंदर के उधर, पीछे से फिरौन भी आ गया। अरे ये इधर क्या हो रहा है, ये तो कोई खुफिया रास्ते बन गए हमारे खिलाफ, भाग रहे हैं। रिवायत में आता है कि फिरौन डरा, नहीं नहीं मैं नहीं आगे अंदर जाता, लेकिन जिब्राइल ने पकड़ के उसकी उस सवारी की नकेल, चल तू भी मेरे पीछे। अल्लाह ताला करता है, जो ही फिरौन आ गया तो सारी कौम आगे आ गई। अब आप इमेजिन तो करें, और मुझे इत्तेफाक भी हुआ है इजिप्ट में उस जगह को देखने का, कि वो समंदर का एक ऐसे लूप है, यूं जैसे आप कहें ना, जैसे चौड़ा समंदर। अब हम खुद कभी सोचते ना कि आखिर इतना चौड़ा समंदर कैसे है, क्योंकि हमारे जहन में या तो कराची का साहिल आता है या जो हमने देखे। अलेक्जेंड्रा में मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ, 50 माइल तक शहर पूरा समंदर के साथ है। पूरे शहर में आप जहां अपने घर से निकलते हैं साहिल समंदर, उधर देखेंगे तो घर है, इधर देखेंगे तो समंदर है। और क्या खूबसूरत समंदर है, ब्लू और ग्रीन। मैंने आज तक इतना खूबसूरत समंदर पूरी कई जगह का देखा, लेकिन मैंने वो नहीं देख भूली, ऐसा शफाफ जैसे रॉयल ब्लू और खिला हुआ ग्रीन कलर है अलेक्जेंड्रा का साहिल। पूरा शहर साहिल पे, उसके आगे ही थोड़ा सा आगे ऐसी जगह है, जैसे आप देखे चौड़े में से इस तरह निकले और यहाँ तकरीबन कुछ माइल का सफर बनता है, जिसमें से मूसा के लिए अल्लाह ने रास्ता बना दिया। अब आप सोचिए, मूसा और बनी इसराइल उधर पहुंच गए, फिरौन और उसका लश्कर थोड़ी लेट चला। इधर से जब आखिरी बंदा अंदर और उधर से आखिरी बंदा बाहर, तो अल्लाह ने कहा वापस मिल जा पानी। आप इमेजिन तो करो, मेरा रब कर क्या सकता है, मुझे तो कोई ना उम्मीद ही नहीं अपने रब से। हर बंदा अपने आप को यही कहे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर इम्पॉसिबल के पीछे आई एम पॉसिबल लिखा होता है। आपको ये कोर्स मुश्किल लग रहा है, आपको ये तर्जमा लिखना मुश्किल लग रहा है, आपको ये बैठना मुश्किल लगता है, तो फिर हम अपने ईमान को चेक करें कि उधर वो सारे चले गए। इसको आज के सबक में हम पढ़ेंगे, अंतुम तंजुरुन, तुम देख रहे थे, नतीजा क्या हुआ, वो सारे बच गए ये गए। और बनी इसराइल अपनी आंखों से देख रही है कि वो जालिम कौम डूब रही है। जरा सोचिए दिल का क्या आलम हुआ होगा, शुक्र तशक्कुर। यहाँ पे फिरौन डूब गया, ये है हमारा आयत 49 से 50 का थीम। और फिरौन डूब गया, हालात पलट गए, कल के गुलाम और पिसे हुए लोग आज बिल्कुल आजाद थे। अब यहाँ पे क्या आता है, मूसा की जिंदगी का एक टारगेट अचीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करना था, फिरौन तो खत्म, दूसरा काम क्या था कि अब ये जो इतना झुंड का झुंड ले चले हैं, इनको क्या करना है। अच्छा अब लंबी कहानी में आप भूल तो नहीं आए, कहां से थे, शाम से। अब वापस कहां जाना था इनको, इनकी मदर लैंड थी ना। आप इमेजिन करें कि ये इजिप्ट है, यहाँ शाम है, ये बीच में इनको समंदर में से रास्ता बना के दे दिया। अब ये समंदर के किनारे पे खड़े हैं, अब इनको क्या करना चाहिए भला, कि चलो भाई मुल्क शाम चले। अब ये कितने साल रहे मिस्र में, 40 से भी ज्यादा साल। पीछे क्या ख्याल है, मुल्क शाम खाली रहा होगा, जो शाम था ना वहां पे कब्जा कर लिया था एक कौम ने जिसका नाम था इमालका, आइन मीम अलिफ लाम काफ हा। ये पेपर रखा हुआ है आपको देंगे, मैं ये आप लोगों के लिए एक प्रिंट आउट लाई थी इंशाल्लाह ताला, इसमें पूरी बनी इसराइल की हिस्ट्री है। कल आपको कहा था जिसको चाहिए आप इरम को लिखा दे, आपको इसका हैंड आउट देंगे। इसमें मैं तो आपको अपने लफ्जों में सुना रही हूँ ना, लेकिन आपको जो फिगर्स फैक्ट चाहिए, ये पूरी इनकी हिस्ट्री 48 तक है, 1948 तक। जहां जहां जरूरत पड़ती है मैं खुद कोट करती हूँ आपके सामने, ताकि आपको कहानी की तरह मजा आए। बहरहाल अब आप देखिए कि बनी इसराइल आ गए इधर, जाना था मुल्क शाम, मुल्क शाम पे दुश्मन कब्जा कर चुका है, कोई कौम जब अपनी जगह छोड़ती है तो वापस नहीं कहते भाई हम वापस आके हमें छोड़ो। अब शर्त क्या थी कि मुल्क शाम में तुम वापस जाते अपने मदरलैंड में, लेकिन तुम्हें इमालका नाम की कौम से फाइटिंग करनी पड़ेगी। बात समझिएगा, बहुत गहरी बात है। इधर क्या करना चाहिए था बनी इसराइल को? बिस्मिल्लाह, चलो इतना बड़ा चलते हैं, अब यहां ये ठुस हो गए, हाय जिहाद करेंगे, हाय हम थक गए, टू मच, हम नहीं कर सकते। फजह बन तवा रब्बू का फकातिला, ए मूसा तू और तेरा रब दोनों जाएं और उनसे लड़ो, इन्ना हा हुना काइदुन, हम तो यहां बैठे हैं, हम नहीं करते। जब हो जाएगा तो हमें बताना, हम खुशी खुशी दाखिल हो जाएंगे। जब वो दुश्मन वहां से चला गया, या पढ़ेंगे आगे सारी आयतें कुरान में आएंगी, इन्होंने जिहाद का इनकार कर दिया, ऐश कोश हो गए, मेहनती नहीं रहे। अल्लामा इकबाल ने इसी पे कहा है कि बदल जाता है गुलामी में कौमों का जमीर। बनी इसराइल का जमीर बदल गया था, कौमें हड हराम हो जाती हैं अल्लाह के हुक्म से जब वो अल्लाह की गुलामी छोड़ के गैरों की गुलामी में आती हैं। दुख लगता है लेकिन कहना पड़ता है कि आज का मुसलमान भी यही तस्वीर पेश कर रहा है। खैर, बनी इसराइल पे ही रहते हैं। अब इन्होंने कहा हम आगे नहीं जाएंगे, अल्लाह को भी इस पे गुस्सा आया, मूसा को भी आया। अच्छा जी, अब क्या करें? मूसा ने कहा कि भाई तुम्हें अल्लाह ने वादा भी दे दिया। आगे आप पढ़ रहे हैं, आज का जहां सबक खत्म हो रहा है वहां वादा पूरा होता दिख रहा है कि तुम निकलो जिहाद के लिए, ये मैं तुम्हें अभी लिख देता हूं कि तुम्हें फतह मिलेगी। आप बताइए, अब आपको कोई कहे कि आप यहां से निकले 2 मील चले तो वहां एक सोने का सेट आपका मुंतजर है, बगैर किसी कीमत के आपको मिलेगा, आप लेंगे कि नहीं लेंगे? या आपकी कोई और नीड रखी हुई है? चल पड़ेंगे ना। इनको यकीन दिला दिया गया कि मुसलमान जब अल्लाह पर यकीन रखते हुए बेहतरीन तरीके से काम, नहीं पता नहीं पहले तूने उधर से तो हमें छुड़ा दिया, अब यहां से फिर कहीं जाके गुलाम ना बना दे। ये कौमों की चॉइस आती है, शुरू में बहुत लोग साथ चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह छांटता है छांटता है, फिर बिल्कुल प्योर क्रीम रह जाती है। हम पहले दूसरे पारे के एंड पे भी एक वाक्या पढ़ेंगे, वहां बिल्कुल इससे सिमिलर हालात है। इस दावते जिहाद के इनकार पे, गौर से सुनिएगा अब जुमला, जिहाद के इनकार पे इनको 40 साल तक यहीं इस समंदर, जैसे आप मेरे हाथों से आप सोच रहे हैं ना कि ये समंदर से उतर चुके हैं, वो मुल्क सीरिया जैसे वो खिड़की है, ये जो बीच की जगह है ना इसको कहते हैं तीह। तीह कुरान में तीह भी है, तुआ भी है, और बहुत है। तीह कहते ही हैरान फिरने को है, ये अंतुम यतीहू नफिल अर्थ के लफ्ज हम पढ़ेंगे। ये 40 साल तक बस उसी इलाके में घूमते रहे, काफी बड़ा डेजर्ट था, सहरा था। इनको अल्लाह ताला ने सजा दी, एक किस्म की सजा थी लेकिन असल में ये इनकी नस्ल की तरबियत थी। वो बड़े बूढ़े जो फिरौन के गुलाम थे, लेकिन थे तो फिरौन के गुलाम ना, वो जिसको हम कहते हैं कोई बात नहीं हम खान सामा है, लेकिन खान के सामा है ना, यानी गुलाम है ना अंग्रेजों के, चलो भाई गुलाम है लेकिन नवाबी और गुलामी, यानी बड़े लोगों के जो गुलाम होते हैं ना वो भी हड़हराम हो जाते हैं, ये आप कह लें। बड़े लोग जो उस जनरेशन में एज वाइज बड़े थे जिन्होंने फिरौन की गुलामी की थी, वो सुस्त हो चुके थे, कॉम्प्रोमाइजिंग हो चुके थे, उनको उनकी चाट रहे हैं लेकिन चलो रोटियां भी तो अच्छी मिल ही रही है ना। किस्सा मुसीबा, इन्होंने इनकार किया, 40 साल तक ये उसी वादी सहरा में रहे। वहां भी अल्लाह ताला ने इन पे बहुत इनाम किए जो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इस सारी चीजों के अंदर, हमारे आज और कल के सबक में, कल के सबक में वो में, कल सम्राज्य के अगले सबक में ही आएगा। अब नतीजा क्या हुआ कि इस 40 साल में ये सब मर गए, बूढ़े थे गए। मूसा अलैहि सलाम का भी इंतकाल इस 40 साल के दौरान हुआ। यूशे बिन नून उभरे जो हजरत मूसा के बहनोई भी थे और दूसरे नबी बन के और इनके शागिर्द भी थे, अल्लाह ताला ने उनके जरिए इस नस्ल की यंग जो जनरेशन थी ना उसकी तरबियत कराई, वो फिर सारे जवान निकले। क्योंकि आप देखिए कि जो कौमें जो गुलामियों के तरीके से बच्चे पाल रहे हैं ना वो ठुस हैं, तलवार भी नहीं उठा सकते, लेकिन जो सहराई और जिहाद वाली जिंदगी बसर करके बच्चे पैदा हो रहे आज भी जिन मुल्कों में दुनिया में इस वक्त दुश्मनों पे जुल्म है, नाम लेने की बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कहाँ क्या है। आप देखिए उनके बच्चे कितने गयूर हैं, वो आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, उनको लफ्ज मौत से कोई डर नहीं लगता, वो हमारे बच्चों की तरह खून दे के बेहोश नहीं हो जाते, क्योंकि अब उनके अंदर, अब ये बच्चे जो जुल्म होता देख रहे हैं ना उनकी आंखों में इंतकाम भड़क रहा है बिल्कुल। अगर मैं सच बताऊं आपको, आप बैठ के ना अभी हिस्ट्री लिखवा ले, हिस्ट्री को खोल के आज से अगले फ्यूचर के 100 साल की कहानियां भी दे, मैं आपको लिख देती हूँ कि अब आने वाले सालों में इस दुनिया के नक्शे पे क्या گرتی ہے. وہ ماضی کے مسلمان تھے, آج ہم مستقبل کے مسلمان ہیں اور حال کے مسلمان ہیں. کل جو بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں, بنی اسرائیل فرعونیوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل سے ہوا, آج امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جو کل ان کے ساتھ ہوا, ان کی نسلوں نے کیا, انشاءاللہ آج ہماری نسلیں اس کی تیاری میں. تو پھر 40 سال میں وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ بھی اتارا, اور ان کے اوپر پھر اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگلا مشن دینا تھا. وہ کیا تھا؟ کتاب. کہ بھائی اب یہ جاہل قوم لے کے تو نکل آئے, اب ان کی کچھ تربیت تو کریں. یہ جٹ گمار ہیں, انہوں نے ساری زندگی بیچاروں نے محنتیں کی, فرعون کے پہاڑ دریا در... سوری فرعون کے جو کشتیاں تھیں, بیڑے تھے وہ چلاتے تھے, عمارتیں بناتے, لیبر طبقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا کام دیا کہ اب آپ تورات لائے. تورات فرعون کے ڈوبنے ہوئی اس دوران, ٹھیک ہے, وہ سب چیزیں ہم ساتھ پڑھیں گے, لیکن آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن گیا نا کہ بالآخر موسیٰ کے ذریعے سے وہ فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئے, اور بعد میں یوشع بن نون کے ذریعے سے 40 سالہ محنت کے بعد پھر یہ گئے واقعی لڑنے. اور واقعی جب وہ یوشع بن نون کی سرمایت میں لڑے, اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. وہی بیت المقدس جو حضرت عمر کیسے اللہ تعالیٰ نے میں پڑھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے. ابھی ہم ان کی ہسٹری کے اس طور پہ پہنچے ہیں, آگے جہاں باقی واقعات آئیں گے پھر ان کا عروج شروع ہوگا. وہ پھر انشاءاللہ اگلے 2-3 سبق کے دوران آپ کو بتاؤں گی. تو یہاں سے اب ہم اب چلتے ہیں اپنی آیتوں کے ساتھ گو تھرو کریں گے. سبق تو پورا ہو گیا, لیکن اب آپ نے اس کو آیتوں کے ساتھ جوڑنا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو غور و فکر کی موقع دیتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر آج ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں تو سچ بتائیں, کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں پہ احسان نہیں کر رہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا ہم اپنے وقت گزار چکے, لیکن کیا ہم آنے والی نسلیں, ہمارے بچے, ہمارے پوتے, ان کے بچوں کے بچے, کیا ہم ان پہ رحم نہیں کریں گے اگر اپنی اصلاح کریں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قصے ہمارے سامنے قرآن کے کھولتے ہی رکھ دیے کہ تم فکر کرو, اپنی سوچو کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو. اب چلتے ہم آیت 47 پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. بنی اسرائیل مات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے, اور وانی فضلتکم علی العالمین, اور خاص طور پر اس بات کو کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی. اس ایک آیت میں آپ دیکھیے کہ تکرار ہے, پیچھے بھی پڑھی آیت 40 تقریباً اس سے ملتی جلتی تھی. یا بنی اسرائیل, احسانات کی بات ہے, اسرائیل کے بچوں, اس میں ایک نسبت ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں باپ کے نام کے ساتھ کیا. نعمتی علیکم, کل ہم نے پڑھا تھا نعمت پہ غور کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کیا دی. کیا نعمت تھی بتائیے؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی؟ نبوت کی نعمت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بہت سارے نبی بھیجے. وہ تو صرف چند ہی لوگوں کو ملتا ہے نا, لیکن آج ہم بات کرتے ہیں وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی ہے. فضیلت کیا ملی تھی اس قوم کو؟ نبوت تو ہر ایک اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا نا, وہ تو اللہ چند لوگوں کو دیتا ہے. آپ کہہ لیں کہ نبوت کی صورت میں ہم پیچھے پڑ چکے کہ ان کو ایک اچھا لیڈر مل گیا تھا, اپنے دور کے لوگوں کو اپنے دور کا نبی ملا اور وہ اس کی لیڈرشپ میں کام کرتے تھے. فضیلت کیا تھی؟ کہ اللہ نے اس گروہ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا. اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے, اور وہ کیا کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی آ جاتا ہے اور وہ قوم اس نبی کی بات مان لیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو امام بنا لیتا ہے, لیڈر بنا لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی خوبیاں دیں, سب سے پہلے تو ان کو جیسے آج امت مسلمہ کو کہا نا کہ وجعلناکم امۃ, کل ان کو دیا. اور حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے چن لے, یہ اللہ کی رحمت ہے. یہاں چند باتوں پہ غور کیجئے گا. اللہ نے ان کو چنا تو کوئی خوبی تھی تو چنا نا. کیا کسی ایسے بندے کو جو وہ کام نہ کر سکے آپ کوئی کام دیتے؟ और अगर कोई किसी ऐसे बंदे को कहीं काम पे रख दे जिसको काम करना ही नहीं आता या जिसको बताया ही नहीं गया, तो आप बताइए क्या क्या अकलमंदी होगी। बड़ी बेवकूफी का काम है ना। यानी आप अपने 10 साल के बच्चे से कहें कि जाओ बाहर से 20 किलो का बॉक्स उठा लाओ, बेवकूफी है। तो गोया कि जब अल्लाह ने इनको चुना तो अल्लाह ने इनको खूबियां दी थी, और इस कौम को अल्लाह तआला ने खास तौर पे खूबियां दी हुई हैं। कौन सी है? नंबर एक, जहनी सलाहियत इनके पास बहुत है। एक तो होता है ना लफ्ज इंटेलिजेंट, ये लोग जीनियस हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इस कौम के जीन्स के अंदर इंटेलिजेंसी कूट कूट के भरी हुई है। फिर दूसरी चीज, बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, इतने बेहतरीन किस्म के ऑर्गेनाइजर्स हैं कि कोई काम करने से पहले उसकी तैयारी करते हैं। आज फलस्तीन के नाम की एक छोटी सी जो रियासत हमें दिखती है, आपको तक 100 साल पहले से इसकी प्लानिंग इन्होंने शुरू की। हिब्रो यूनिवर्सिटी पूरी बनी कब थी? जब इन्होंने ये प्लान बनाया था कि हमने आने वाले दौर में दुनिया के इस खत्ते में एक छोटी सी रियासत कायम करनी है। अपने लोग तैयार किए, ये बड़ा बेहतरीन असूल होता। किसी बाहर के बंदे पे भरोसा नहीं करें, अपने ही सिस्टम के लोग तैयार करें और फिर उनको रिप्रोड्यूस करें, फिर उनको मल्टीप्लाई करते जाए। इन्होंने यही किया। मैंने गालिबन रब का पैगाम मेरे नाम एक पूरा आर्टिकल पढ़ के सुनाया था, कभी आपको मौका मिले वेबसाइट से पिछली तफसीरें सुना करें, उसमें जो डिटेल्स होती हैं अब दोबारा मैं नहीं सुना सकती, लेकिन यकीन करें खजाना है उनके अंदर पड़ा हुआ। कि किस तरह हिब्रो यूनिवर्सिटी जब बनी थी उसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के लोगों ने कमेंट दिया हमें कि वो किसी और ही दुनिया की मखलूक लगते थे। सारे वहां के टीचर वॉलंटियर थे और वहां जो स्टूडेंट्स आते थे उनको लफ्ज छुट्टी गाली लगता था, और उन्होंने इतने थोड़े अरसे में उस एक यूनिवर्सिटी की बेस पे इतनी मनी जमा कर ली कि आज आप देखिए कि है कितने को, शायद आपको हैरत होगी, मुट्ठी भर है। जैसे आप चावल पकाते हुए अगर चावल 6 डब्बे हैं तो उसमें 2 कप चीनी डालते होंगे ना, या उससे भी कम कोई चीज मिश किशमिश या मेवा देख ले कितना को डालते होंगे। यकीन करें ये गिरोह इस वक्त दुनिया में अपनी तादाद के एतबार से आटे में नमक के बराबर है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने इनको इतनी खूबियां दी हैं कि जहां जाते हैं चाह जाते हैं। वजह जहनी सलाहियत है, ऑर्गेनाइज्ड है, दूरस्त है, प्लानिंग करते हैं, वक्त से पहले चीजों को देखते हैं, फिर ये ऑब्जर्व करते हैं। इस कौम के अंदर एक फजीलत और के ऑब्जर्वेशन इनकी बड़ी स्ट्रांग है। ये सिर्फ इस तरह के इन्होंने बड़े बड़े चीजें बना के रखी हुई हैं कि जिसमें ये ऑब्जर्व करते रहते हैं कि दुनिया के किस खित्ते में क्या चीज है जिसको हमने यूज करना है, कहाँ के लोग, कहाँ की नस्लें, कहाँ का चॉकलेट, कहाँ की कोकीन, कहाँ का चावल, कहाँ का आटा, कहाँ के तेल निकल आया, सोना चांदी। इतने माशाल्लाह ये ऑर्गेनाइज्ड हैं कि ठीक है अपने हक में तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, देखिए कि किसी की खूबी का इतराफ करना चाहिए। इस तरह से ये बैठते हैं फिर उसको धाड़ साड़ काम नहीं शुरू कर देते। एक और अल्लाह ताला ने इस कौम को जो खूबी दी है ना, वो है इनका मनी माइंड। माली मामलात में ये कौम इतनी एक्स्ट्रा जीनियस है। आज पूरी दुनिया में जो बैंकिंग का निजाम है, आपको पता है इसका मुजीज आपने कहाँ सुने होंगे? एक यहूदी शख्स था जिसने ये पूरी इकोनॉमिक्स जो इस वक्त दुनिया में चल रही है उसका जाल फैलाया। इस पे बात तो हम जाके आगे करेंगे, जहां मौका मिलेगा करेंगे इंशाल्लाह तीसरे पारे में जाके। लेकिन आज बैंक ऑफ इंग्लैंड, दुनिया में बैंकिंग का निजाम, सोने चांदी की बजाय कागज करेंसी नोट, जो कागज के टुकड़े फेर रहे हैं, ये यहूदी प्लान है। अमेरिकन डॉलर पे स्टैंप लगती है वो 100 रुपए का बन जाता है, पाकिस्तानी रुपये पे मोहर लगती है वो 0.1 या 0.6 का रह जाता है। ये ब्रेन इनका है, यानी पूरी दुनिया को मैनी मैटर्स में इन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। फिर एक और इस कॉम के अंदर जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी खूबी है ना, वो ये है कि गोल्ड और सिल्वर, यानी सोने और चांदी के जखायर, ये सारी फजीलतें इनको अल्लाह ने दी। अब आप सोचिए कि जब ये बारीक अल्लाह ताला ने इनको सिफात दी हैं, अगर इन सारी खूबियों का इस्तेमाल करते ये तौरात को नाहिफिज करने में, अल्लाह की किताब को, तो आपको पता है क्या आज दुनिया में क्या होता? पूरी दुनिया में ज्यूइज्म होता, यहूदी हो जाते माशाल्लाह सब लोग, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबी है। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ने इनके जहन में जहां इतनी फजीलतें डाली, एक और इनको बजाहर फजीलत का ख्याल है लेकिन असल में वो इनके हक में फायदा मंद ना। और वो क्या है कि इनको ये ख्याल है अपनी फजीलत का कि ओनली बोर्न ज्यू, यानी बाय बर्थ जो यहूदी है ना, बस वो यहूदी है। आपको शायद नहीं पता है या पता है कि जैसे क्रिश्चियंस कितना काम करते हैं ना, मिशनरीज लाइक दिस, मुस्लिम्स भी करते हैं अपनी तौफीक के मुताबिक, ज्यूज जो है ना ये तबलीग नहीं करते। क्यों? ये कहते हैं कि ज्यूइज्म एक इतना बड़ा एजाज है जिसको आप बाद में नहीं कोई ले सकता, बाय बर्थ ही अगर वो अपने इस खानदान में पैदा हो गया तो हो गया। ये वही है जैसे बाज खानदानों में दूसरे खानदान की बहू नहीं लाते लोग, कि नहीं नहीं ये दूसरे खानदान की आएगी तो ये पता नहीं क्या हो जाएगा। उससे फायदा क्या हुआ कि शुक्र है ये तबलीग नहीं करते, वल्लाह ही मेरा दिल कांप जाता है कहते हुए। अगर ये लोग तबलीग भी करते होते ना तो सब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक तरफ और माशाल्लाह इनका जो तरीक़ेकार था वो दूसरी तरफ था। काम बड़ा खूबसूरत करते हैं और अल्लाह का वादा है कि दुनिया नाइज रोक के काम करेगा उतना ग्रो करेगा। आज आपने ये कोर्स शुरू किया है ना, जुम्मा जुम्मा 8 दिन, अब दूसरा जुम्मा कल आ जाएगा, 2 वीक हो गए ना। आज ही लिख लें आपका मुस्तकबिल आपके काम करने के तरीके पे लिखा हुआ है। बींग अ स्टूडेंट, बींग अ स्टाफ और बींग अ हेल्पर, आप जो काम जिस तरह जिस लेवल का अब करेंगे ना, ये आपके पूरे शहर का नसीब है आपके पीछे लगा हुआ। इस लेवल में कई प्लेटफॉर्म में लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जिस कुरान को आप पढ़ें, अगर आपने आगे से रूल्स को फॉलो करना है, रोना नहीं, धोना नहीं, हाय हाय नहीं दुहानी, दुहाइयां नहीं मचानी, अल्लाह से मदद मांगे, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। अल्लाह सुबहान तआला ने इस सारी कौम को जो मनसब दिया था कि देखो तुम्हें अपनी तरफ से इल्म दे रहा हूँ, नबी भेज रहा हूँ, सारी कौमों का इमाम और रहनुमा बना रहा हूँ, ताकि तुम खुद भी रब के बंदे बनो और लोगों को भी उस पर चलाओ। इन्होंने अपनी सारी खूबियां दुनियावी कामों में इस्तेमाल कर ली और दीन को पीछे डाल दिया। आप बताइए वो इंटेलिजेंस कहाँ गई, जिसको आप कहते हैं ना ईवल जीनियस का लफ्ज सुना होगा आपने। शैतान भी तो बहुत ही ज्यादा जीनियस था, लेकिन क्यों उसने मार खाई? ईवल जीनियस था। तो बस दफा होशियारी चलाकी काम नहीं आती। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें लोगों के ऊपर इमाम बनाया, तुम्हें ये सारे काम दिए कि तुम ये काम करो और तुम इसका फायदा लो। लेकिन तबके का बिगाड़ अवाम में आता है, ये बात सच है। अल्लाह ताला के ये वादे तौरात में थे या इनके जो रिब्बीज थे उनके जरिए थे, लेकिन देखिए कि वो बात फैली कैसे। मैं इसको बिल्कुल, अगर आपके लिए टू एडवांस ना हो ना, तो मेरे सेहन में इस बात को कहते हुए पता क्या आ रहा है कि जैसे आप ये देखिए, ये ब्लू पेन है ना मेरे हाथ में, ये वाइट चादर है। खुदा ना खास्ता अगर मैं अपने इस पेन से इस वाइट चादर पर एक छोटा सा डॉट लगाऊं, आप देखेंगे कि शुरू में वो बिल्कुल छोटा सा डॉट होगा, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा कि वो इंक फैलते हुए वो बड़ी होती जाएगी। और अगर मैं पेन छोड़ ही दो इधर, तो आप देखेंगे कि वो फैलेगा। ये बात लिख ले, आज हम मुसलमानों के नाते से भी, और उनके हम दोनों भाई भाई हैं, इस लिहाज से यहूदी मुस्लिम भाई भाई है, कोई शक नहीं इसमें कि अल्लाह ने इनामात नेमते सारी इनको भी दी, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई कि जहां हमने इन इनामात को उन्होंने मिसयूज किया, मखदूब इन अलैहिम, तो जो उन्होंने किया वो मखदूब है। तो आज हम जो करके क्या अल्लाह की रहमतें पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आज अल्लाह का कोई हम पे फजल है, कोई आज अल्लाह की नेमत हम पे है? वही है। तो बात जो क्या थी, वो थी कि मजहबी तबके का बिगाड़ आम लोगों में फैलता है, जैसे इंक पे लगा हुआ एक धब्बा वक्त के साथ सारी चादर पे फैल सकता है। किसी सोसाइटी के अंदर अगर आप बेहतरी लाना चाहते हैं ना, तो आपको वहां का रिलीजियस तबका ठीक करना पड़ेगा। लीडर्स हर लिहाज से जो बड़े लोग होते हैं, और अंबिया कराम की दावत इसीलिए बड़े लोगों की तरफ होती थी, कंट्रोल करें। इनके मजहबी तबके ने जो इनको लोरियां दी थी ना, देखिए जब मजहबी तबका अपनी मर्जी से दीन के काम करता है ना, तो फिर वो आम लोगों को भी तो किसी चीज में उलझाएगा ना। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे माँ बाप खुद फिल्म देखना चाहते हैं ना अगर, तो वो बच्चे को भी किसी चीज में बिजी करेंगे पहले कि जाओ तुम बैठो और ये करो और ये देखो देखो, ताकि हमें ना ये देखे। मजहबी तबका इनका अपनी किताबों में तलबीस हक कर रहा था, ला तलबिसुल हक का बिल बातिल व तक्तुमुल हक का। तो अब आम लोग भी तो जीनियस थे ना, बेवकूफ तो नहीं थे, तो वो भी तो सोच सकते थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते थे कि भाई आपने ये क्यों किया, आपने हमें बुला लिया, हमारा वक्त आया कि दिस एंड दैट। तो इनके उलमा ने आम लोगों को कुछ लोरियां दी थी, और वो क्या थी कि कोई बात नहीं, मौज करो, मस्ती करो, बस हमारे हाथ गर्म करो, हमें खुश रखो, हमारी खिदमत करो, हमारी शख्सियात को पूजो, रह गई आखरत, क्यामत, हम तुम्हारे काम आएंगे। कफारे का नजरिया, बख्शिश का नजरिया, सिफारिश के नजरिए पैदा किए, जिसका नतीजा हुआ क्या हुआ कि कौम अनदेखे रब से नहीं डरी, सामने बैठे हुए खुदाओं से डरने लग गई। अल्लाह ताला कहते हैं वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। ये दो दफा आयत है, जहां पहली दफा बारी है, आगे जाके जहां बनी इसराइल का किस्सा पूरा होगा ना, आप देखेंगे वहां भी आयत आएगी। बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है जैसे ये देखिए मेरे हाथ दो ब्रैकेट्स हैं, आपने इंग्लिश में देखा होगा ना, जब हमने एक टॉपिक, हाँ वो बात पूरी होती है तो एक एंडिंग ब्रैकेट है। ये जो सबक इस वक्त हम पढ़े ना, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर से बात शुरू हो रही है। और आप देख रहे हैं यहां भी या बनी इसराइल उसकुरु है, वत्तकु यौमन है, और आखिरी लेसन्स भी जब आएंगे ना तो वहां भी ये दो बातें हैं कि इसके बीच में है ये बनी इसराइल के 40 साल। ठीक है, क्या कहा, वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और उस दिन से डरते रहो जब ना तो कोई दूसरे के काम आ सकेगा और ना इसके हक में कोई शिफात की जाएगी, सिफारिश कबूल होगी, और ना किसी से फिदिया लिया जाएगा, और वला हुम युनसरून, ना मदद दी जाएगी। आप नोट करके लिखिए, नंबर वन क्या है, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन। दूसरा क्या है, ला युकबलु मिनहा शिफातुन। तीसरा क्या है, ला युखजु मिनहा अदलुन। और चौथा क्या है, ला हुम युनसरून। ये है चार बिगाड़ के नुक्ते जो अकीदे आखरत को बिगाड़ देते हैं। लिख लें, अकीदे आखरत अपनी जगह पे बस एक डॉगमा है जी, हम आखरत को मानते हैं, हम जन्नत को मानते हैं, हम जहन्नम को मानते हैं। क्या आज हम मुसलमान नहीं कहते ये? क्यों फिर मानने के बावजूद नेकी के काम नहीं करते और क्यों गुनाह से नहीं रुकते? क्योंकि इन चार में से एक मुसीबत पड़ी होगी। आज भी आप उम्मत मुस्लिमा पे रख के देख लीजिए, जिस मुसलमान को आप बेअमल देखेंगे ना, उसके पीछे इन चार में से एक वजह होगी, और वो क्या कि कोई हाफिज़े कुरान जो है वो 70 लोगों की शिफात कर देगा, और बच्चे माँ बाप की सिफारिश कर देंगे, दिस एंड दैट। आप देखिए नफ्सुन अन नफ्सिन, बोझल ना पड़े ना, तो ग्रामर के एतबार से ये नकिरा है। एक क्या होता है मारिफा, एक होता है नकिरा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको आप, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है यहाँ नफ्सुन अन नफ्सिन, यानी कुछ तो खास, आम से आम बंदा भी किसी के काम नहीं आएगा। अमूमन हम क्या सोचते हैं, खास लोग हमारे काम आ जाएंगे ना, नेक, वली, बुजुर्ग, पैगंबर। अल्लाह कहता है वो तो खास लोग है ना, आम बंदा भी दूसरे के काम नहीं आएगा। नफ्सुन अन नफ्सिन, मैं इसको पढ़ती हूँ ना, बिल्कुल मुझे तन्हाई लगती है, ऐसे लग रहा है कोई कह रहा है अपना बोझ खुद उठाओ, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। आम हालात में हम दुनिया में एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, शोहर भी करते हैं, बाप भी करते हैं, बीवियां सभी करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब गुस्सा आ जाता है, तब कहते हैं खुद करो, मैंने कहा था ना इतना सामान नहीं लेके आना, अब खुद उठाओ। बच्चों को भी माएं डांटती रहती हैं। क्यामत के दिन भी अल्लाह ताला ने साफ कह दिया, जर्रा बराबर। और आगे आप देखिए शयन के साथ और ताकीद है, कुछ भी नहीं। नफ्सुन अन नफ्सिन में भी शिद्दत है और शयन कुछ भी नहीं, जर्रा बराबर नहीं, कि कोई गलती ना दिमाग में लेके आना, कोई किसी के काम नहीं आएगा। आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन किसी के काम आता है, माँ। पता है कि वहां आप लिखिए, अपने पास सवाल लिखिए कि भाई क्यों काम नहीं आएंगे, तो नंबर एक इजाजत नहीं होगी, अल्लाह का हुक्म ही नहीं है। दूसरी बात है कि दिल से रहम के जज्बे निकल जाएंगे। आज दुनिया में माँ गीले बिस्तर पे सो के सूखे पे क्यों आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में डाला हुआ है रहम है, ममता है, बाप की बिपता है, रहम के, मोहब्बत के, हमदर्दी के सारे जज्बे उस दिन मांद पड़ जाएंगे। कोई किसी की खराबी नहीं, कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। अल्लाह के नबी तो अपनी बीवियों से भी कहा करते थे कि आयशा, ए फातिमा, ए फलां, अपने अपने वक्त में हर आयशा को अपना अमल कर लो, कल क्यामत के दिन मेरी आस पे ना आना। ठीक है नबी फायदा देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ काबिलियत तो होनी चाहिए। हजरत आयशा ने एक प्यार मौके पे बड़े प्यार से पूछा था कि क्या आप मुझे याद करेंगे क्यामत के दिन, तो आपने कहा कि आयशा हाँ, मगर 3 मौके ऐसे आएंगे कि ला यज़कुरु अहदुन अहदा, कोई एक किसी दूसरे को याद नहीं रखेगा, हत्ता कि मैं भी तुझे भूल जाऊंगा। वो कौन से 3 मुकाम है, इन 10 सिरात, पुल सिरात के ऊपर से गुजरते हुए, इतनी वहशत होगी, आप खुद सोचे, अल्लाह ना करे यहाँ आग लग जाए ना, तो फिर देखते हैं कौन किसकी बेटी और किसकी माँ है, जान अपने ही लोग बचाते हैं। और आपने वो कहानी भी सुनी होगी ना बंदरिया और उसके बच्चे की, कि कैसे लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया कि एक केज में, पिंजरे में बंद दिया और वहां बच्चा प्यार कर रहे हैं, और फिर उस केज को नीचे से गर्म करना शुरू किया, जरा जब पिंजरा गर्म हुआ तो माँ बेचैन हुई, बच्चे को उठा उठा के ऊपर जा रही है, छत पे लटक गई। लेकिन जब वो केज और गर्म होता गया, उसी बच्चे को नीचे डाल के माँ उसके ऊपर खड़ी हो गई। यौमा यफिर्रुल मरु मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व अही। पढ़ लें सूरत अब्बस में, अल्लाह ने कहानियां खोली हुई है कि आदमी उस दिन भाग रहा होगा माँ से, बेटे से, बाप से, शोहर से, भाई से, क्योंकि लिकुल इमरी मिनहुम यौम इज़िन शानु युग्नी। उस दिन हर बंदे को अपनी फिक्र पड़ी होगी, आपका अपना ही सामान ज्यादा हो एयरपोर्ट पे तो क्या आप किसी दूसरे का उठाएंगे? आप खुद ही परेशान है, बीमार है, तो क्या आप दूसरे की मदद कर सकते हैं? तो कैसे हो? तो पुल सरात, फिर दूसरा मुकाम मेजान के ऊपर, जब हाथ में नामे अमाल मिल रहे हैं, हाय किधर हो, यानी मीजान क्या, जब नेकियां तुल रही होंगी, पता नहीं रिजल्ट क्या निकलना है, हाय अल्लाह ही खैर। यहां अगर हम आपका सिर्फ सिर्फ फातह के ट्रायल टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर देना तो आपके हाथ ठंडे हो जाए, रिजल्ट नाम ही कितना बुरा है। कोई रिपोर्ट आनी हो, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, और रिपोर्टिंग के वक्त बंदे का दिल धड़क रहा होता है कि पता नहीं अब अंदर से निकल के आना है, तो अल्लाह कहते हैं वहां क्या होगा, सोचो तुम्हारी पूरी जिंदगियों के रिपोर्ट कार्ड्स होंगे। और फिर तीसरा, जब अमाल नामे बट रहे होंगे, किसके हाथ में जाता है, फम मनूत या किताब बहू भी यमीनी और शिमाली, तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला कहते हैं ला तुमने जो कहानियां रखी हुई ना, और ये देखिए मजहबी तबके की तरफ से स्टोरियां होती हैं, वो बाबा जी काम आ जाएंगे, वो बाबा जी ने कहा मेरे नाम की न्याज दो तो बस देखना मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। कर सकते कोई? खुद ही फंसाओ, कोई बंदा तो दूसरे की मदद करेगा? कोई करना भी चाहे तो क्या उसको इजाजत मिल जाएगी? हरगिज नहीं। इसीलिए फिर इसके बाद आगे फरमाया वला युक्बलु मिनहा शफाअतुन, सिफारिश भी काम नहीं आएगी। सिफारिश भी हमारे यहाँ बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, दो एक्सट्रीम्स हैं। कुछ कहते हैं कि सिफारिश है ही कोई नहीं, ना नबियों की, ना वलियों की, ना किताबों की, ना कुरान की, और कोई कहता है कि सब कुछ ही सिफारिश से हो जाना है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि सिफारिश होगी, बरहक है, लेकिन शरायत के साथ। यानी आप कहेंगे कि सिफारिश इंटरसेक्शन, सिफारिश को क्या कहते हैं आप इंग्लिश में, इंटरसेशन होगा, लेकिन कंडीशनल है। पहली शर्त क्या है कि जिसके लिए सिफारिश की जा रही है ना, उसके पास कुछ काबिलियत तो हो। देखिए कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पढ़ चुके हैं 4 साल 6 साल, फिर किसी एमएन ने एमपीए की कोई सिफारिश आई तो हो सकता है आपको किसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए। और जिस बंदे ने मेडिकल पढ़ा ही नहीं, क्या उस एमएनए की सिफारिश की इसको किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर लगा दें ये चलेगी? नेवर। उसको चपरासी की तो लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी, लेकिन डॉक्टर की तो नहीं मिलेगी। तो कुछ सिफारिश के लिए काबिलियत हो, ये नहीं कि आप खुद नमाज भी ना पढ़े और अपने हमारी सिफारिश कर देंगे, वो तो वहां पहचानने से इनकार कर देंगे, आपको शक्लें बदल जाएंगी। जहन्नुम के अजाबों ने माँ बाप की शक्लें बदल दी होंगी। अगर ऐसे हाफिज बच्चे लाए भी जाएंगे कि आप अपने माँ बाप की सिफारिश रिवायात में आते, वो पहचानने से इनकार कर देंगे, ये मेरी माँ ही नहीं है, वो तो बड़ी खूबसूरत होती थी, तो अच्छा तुम नहीं पहचानते, जाओ फिर इस औरत को वापिस आग में डाल दो। ला चुकबलु मिनहा शफातन। फिर सर आप देखिए कि सिफारिश की एक दूसरी शर्त क्या है, कि जिसके लिए सिफारिश की जा रही है उसके आमाल में कोई ऐसी रुकावट ना हो जो सिफारिश को इग्नोर एक्सेप्ट होने से रोक ले। मसलन बेनमाजी है, चलिए 100 बंदे उसकी सिफारिश करें, बेनमाजी के लिए कबूल ही नहीं। कोई जानी है, कोई कबायर का गुनाहों का शिकार करता है, यानी कोई ऐसी बिदत है, कोई अकीदे की खराबी है, कोई जिंदा मुर्दा की बात है, इससे नहीं होगा। आप इसको यूं समझिए, देखिए कि दुनिया में सिफारिश कब होती है, रिजल्ट अनाउंस करने से पहले। जज साहब के पास एक फोन आता है, फैसला बदल गया। क्या होता है अगर फैसला डिक्लेयर हो जाए और फिर फोन आए सदर साहब का, वो कहेंगे सॉरी इट्स डिक्लेयर्ड। फैसले से पहले सिफारिश होती है ना दुनिया में, आखिरत में ऑपोजिट है। मेरा लिए इससे ज्यादा खूबसूरत मिसाल आप नहीं समझ सकते सिफारिश के लिए, कि आखिरत की सिफारिश क्या है, फैसले पहले होंगे, सिफारिश बाद में होगी। बेसिकली सिफारिश एक कॉर्नर है, मैं आपको सादा सा लफ्जों में बता दूं, जैसे आप आपका कोई स्कूल है, 100 बच्चे सेरेमनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपने यहाँ प्राइजेस का ढेर लगाया हुआ है। अब आप कहते हैं कि खुद क्या देना, चलो शहर की किसी मारूफ शख्सियत को बुलाते हैं, किसी इमाम मस्जिद, किसी नेक शख्स, किसी को भी आप बुलाते हैं और आप कहते हैं आइए जरा अपने हाथों से हमारे बच्चों को गिफ्ट दे दें। आप सबने डिसाइड किया हुआ है ना, गवर्नमेंट जो आपकी मैनेजमेंट है उसने लिखा हुआ है ना किस बच्चे को फर्स्ट देना है सेकंड, और उसके रिजल्ट की बेस पे वो क्या करेंगे, वो आएंगे गेस्ट ऑफ ऑनर, सलाम दुआ करेंगे, अच्छा ये बच्चा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। क्या आप वो चॉइस रखते हैं कि फर्स्ट का प्राइज थर्ड को और थर्ड का फर्स्ट को दे दें? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर सकते हैं? ये है सिफारिश। अल्लाह ताला ने सारों के हिसाब किताब से फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके लगा के रख लिए हमें, सब कुछ है, डिसाइडेड है कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी कुर्बानी दी, आपने कितने मौके जाया किए, कितने अवेल किए, सब रिजल्ट तैयार है। नबी और नेक लोग जो होते हैं ना जिंदगी में, लोग उनको इनका ड्यू हक नहीं देते। लिख लें, हाल की शख्सियत के साथ रहना बड़े सब्र का मामला होता है, माजी की शख्सियत के गुण गाना कौमों का शुआर होता है। आज हम जो नबी के नाम पे नाते पढ़ के रोते हैं ना, ये इसलिए कि वो अब हमारे लिए माजी की शख्सियत है, हाल के उलमाए कराम के हम लतीफे बनाते हैं। बात समझ रहे हैं? अपने सामने मौजूद अपने दौरे हाजिर के नेक लोगों को बर्दाश्त ही कर लेना तो बड़ी बात है, और जब वो नहीं होते तो लोग उनके गले में फूलों के हार डाल के तस्वीरें लटका देते, होता कि नहीं होता? आप इसको अपने मिसाल पे ले, घर में सास बुजुर्ग बैठी हैं, उनके साथ रहना सब्र करना कैसा है, और जो फौत हो गए हैं पिछले बुजुर्ग उनके तस्करे जब हम बैठते हैं तो हमारे होठ नहीं सूखते, गीले सूखे सूखते हैं, हाय वो अम्मी जान ऐसी थी, वो दादी ऐसी थी, वो अम्मा ऐसी थी, फलां थी। तो माजी के बुजुर्गों की बातें करना बहुत आसान होता है, और माजी के उस्तादों के किस्से भी बड़े अच्छे लगते हैं। हाल के उस्ताद के साथ जीना ये बड़े सब्र का काम होता है, जो ये कर जाता है वो डर जाता है। अब ये क्या हुआ, इन लोगों ने दुनिया में जब अल्लाह के दीन का काम किया तो लोगों ने इनकी कदर ना की। पढ़ेंगे सूरह नूह, सूरह कमर पढ़िए, हजरत नूह को पत्थर मारते थे लोग, किट किट किट, उंगलियां कानों में ठोसते थे, मुंह पे कपड़े ले लेते थे कि पीछे हो जा मैं तेरी शक्ल नहीं देखनी। आज देखिए, उसी जब वो नूह चले गए, उनकी दौर के जो लोग थे लात मनात उज़्ज़ा, उनके नाम के बुत बना के रखे हुए। बात बात है, तो अल्लाह उन नेक लोगों को क्यामत के दिन डिस्प्ले देगा, कमन तुम्हें इज्जत नहीं मिली थी, कम मिली थी, जो मिली थी वो बहुत थोड़ी थी, तुमने तो इतना बड़ा काम किया, लोगों ने तुम्हें उतना क्रेडिट नहीं दिया, आओ आज हम तुम्हें देते हैं। तो ये किस्म का प्रोटोकॉल है, असल फैसला अल्लाह का है, और ये मौजू हम आगे जाके बहुत पढ़ेंगे, अभी आज के लिए बस इतना भी काफी है, समझ गए हैं कि सिफारिश होगी लेकिन उसकी कुछ शरायत है। अब इसके बाद अगली चीज क्या है, इसमें आप देखिएगा, वला यूखज़ु मिन्हा अदलुन, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए रैंसम, करे कोई भरे कोई, बाप के बदले में बेटा, बेटे के बदले में बाप। बनु कैन का और बनु नजीर और बनु, तीसरा इनका कबीला था बनु कुरैजा। जो कैन का था ना बड़े अमीर कबीर कबीला था, बनु कुरैजा जो थे वो जरा गरीब कबीले थे। तो जैसे आपने सुना होगा दुनिया की और कौमों में भी होता है ना कि शूदर जो हैं और ब्राह्मण, फर्क है ना कि ब्राह्मण जो है वो भगवान के सर से पैदा हुए हैं और शूदर उसके पांव से पैदा हुए हैं। तो क्लासिफिकेशन है ना, कॉलोनी बनाते हैं, इनमें भी यही था, गलत काम कोई करता था उसकी जगह उसके गुलाम को मुलाजिम को सजा देते थे। अल्लाह का तला यू खजुम, ये तो नहीं होगा कि बेटी गलत काम करे तो माँ के अल्लाह जी मुझे इसकी जगह आग में डाल दें, इसको निकाल दें, और वला हुम युनसरून, ना उनकी मदद की जाएगी, आराम से बैठो अपना काम खुद करके लाओ। अब देखिए कि इसमें अगर आप देखें ना, हर लिहाज से अजाब को दूर करने की मुकम्मल तौर पे नफी कर दी, यानी कोई तरीका ही नहीं है कि तुम्हारा अजाब दूर हो, क्या उसके साथ ही मामला होगा, एक की जगह दूसरा नहीं बचेगा, किसी की सिफारिश जो है वो उसको फायदा नहीं देगी, जुर्माने और मुआवजे अदा करके मुजरिमों को छुड़ाया नहीं जाएगा, और एक आखिरी चीज होती है, लोग असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं, थानेदार साहब को फोन करा दिया, MPA से फोन करा दिया, अल्लाह कहता है ला यंसुरून, कोई किसी की मदद भी नहीं करेगा कि किसी पे करे, तो उस दिन फिर मदद किसकी होगी, सिर्फ अपने अमलों पे। ये जो मैंने बीच में रेफरेंस दिया ना सूरत तबस की आयते में, यो मजब, आपका काम क्या है कि आपने नोट्स में 3-4 लाइनें छोड़ दीजिए और बाद में जाके खुद खूबसूरत तरीके से आपने इसका तर्जमा लिखना है। इसी तरह सूरत मुमतहना کی آیت نمبر 3 میں بھی آتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، قیامت کے دن نہ تو تمہارے رشتے ناتے کچھ فائدہ دیں گے نہ تمہاری اولادیں. یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. اور واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھتا ہے. اس آیت کو پڑھ کے کیا لگا؟ خود سے پوچھئے کچھ اس میں حکمت دیکھی. مجھے تو یہ دیکھی کہ میں نے کسی کے لیے رب کو ناراض نہیں کرنا. سوری، نہ کل آپ نے میری سفارش کرنی ہے، نہ آپ نے میرے کام آنا ہے، نہ آپ نے میری جگہ قبر میں جانا ہے، نہ پل صراط سے گزرنا ہے. تو بھائی آئی ایم اوکے وتھ مائی سیلف، بالکل اپنے آپ کو رکھیں. اور دوسری چیز اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو چنتا ہے تو پھر ان کا حساب بھی سخت لیتا ہے. اگلی آیت میں اب وہ ہسٹری جو آپ کو سنا چکی ہوں، آپ ذرا سنیے اور انجوائے کیجیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اے آل یعقوب اس دن کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون اور اس کے ساتھی جو تھے، آل فرعون جو تھی، ان سے نجات دی. لفظی وضاحت میں آپ کافی ڈیٹیل سے سن چکے ہیں نا آل کا لفظ، یعنی اس کے ہم خیال لوگ جو اس کے ساتھی تھے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو چکھاتے تھے برا عذاب. یسومون، صوم یسومو کہتے ہیں جانوروں کا چرانا. پھر کیا کرتے تھے؟ وَيَسْتَحْيُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اب ذرا یہاں نوٹ تو کیجئے، ہم نے پڑھ لیا نا، یہ کب ہوا؟ ذرا آپ ہی دہرا دیں، یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب بنی اسرائیل مصر میں فرعونیوں کے ہاتھوں غلام بن چکی تھی. کیوں غلام بنے تھے؟ برے کرتوتوں کی وجہ سے. کیوں کرتے تھے ایسا؟ آپ ہی لوگ بتائیں، ابھی ساری بات بتا دی ہے نا. خواب دیکھا تھا کہ ایک بیٹا جو آئے گا اور وہ مروا دے گا، تو فرعون نے سوچا مارو. اور ہر دور کے فرعونیوں کا، فرعونوں کا ایک ہی گول ہے کہ مسلمان جہاں دوسری چیزوں میں تھوڑے ہیں تو پاپولیشن میں بھی تھوڑے ہو جائیں. یہاں اس پہ بات کریں، یہ جو مسلمانوں کا دو بچے خوشحال گھرانے کا نعرہ دیا ہے، سچ بتائیں آپ جن جن لوگوں کو جانتے ہیں جن کے صرف دو بچے ہیں، کیا وہ خوشحال گھرانہ ہے؟ اللہ کی پناہ، گھر گھر نہیں لگتا. ایک بچہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ماں کی جان پہ پڑی ہوتی ہے. جب دو ہے تو پھر خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، بڑے آئیڈیل گھرانہ لگتا ہے. ایک بیٹا تو کسی کا دو، میں کہتی ہوں اللہ دو تو دے کم از کم، ورنہ ماں کا دل، ماں کی نماز، ماں کا دکھ، وہ باہر بھی جائے تو ماں فون کر رہی ہوتی ہے. ذہنی مریض بن جاتے ہیں بچے، بعض دفعہ مائیں بھی سپون فیڈنگ ہوتی ہے، تو میرا ایک بیٹا، تو میرا ایک بیٹا. اب وہ غریب اللہ کا بندہ جب شادی کر لیتا ہے تو بھائی وہ بہو بھی تو کل کہے گی کہ ماں اگر آپ کا ایک بیٹا ہے تو میرا بھی تو ایک ہی شوہر ہے. آپ سوچئے کہ کتنا ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اور جس کی ایک بیٹی ہے ہر بات میں کہیں گے میری بھی تو ایک ہی ہے. تو بھائی ایک ہی ہے، تب ایک ہے یا دس ہے؟ نصیب تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. سائیکک ہوتے ہیں، اسلام اس چیز کو نہیں پسند کرتا. یہ جو بیٹوں کو ذبح کرنے کی بات، ایک تو وہ خواب کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے نا، دوسرا یہ گول بھی تھا کہ مسلمان کم ہو، آبادی مسلمانوں کی کم ہو. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں آپ کو دکھے گا وہی چیزیں جو اپنے ملکوں میں بین ہیں، ہمارے ملکوں میں عام کی جا رہی ہیں. اپنے ملکوں میں بچے پیدا کرنے پہ بینیفٹس ہیں، صرف ماں کو نہیں باپ کو بھی. ایک سال کی چھٹی، کہ ماں چھٹی لے لے یا باپ لے لے، بچے کو پالو، بچے پیدا کرو. ایسے دنیا کے ملک موجود ہیں جو بچے پیدا کرنے پہ ہزاروں ڈالر دے رہے ہیں، عورتیں بچیاں پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہم تھک، ہم کیوں باؤنڈ ہو، ہم پابند ہوں گے. امت مسلمہ کے لیے اللہ کے نبی کا کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے خاندان میں کثرت سے بچے ہوں، میں اپنی امت کی کثرت پہ مان کروں گا. اور ہم نے وہ نیلے اور فروزی اور پنک کپڑوں کے شوق میں کہہ دیا افورڈ نہیں کرتے، حالانکہ ہر بچہ آتا ہے اپنا رزق ماں کے جسم سے لے کے آتا ہے. ایک ایشو ہے اس کے اوپر، یعنی اگر سائڈ پہ دیکھے تو حقیقت ہے کہ کل تو انہوں نے بچے تھے جسمانی، آج کے فرعونی کلچر نے ہمارے بچوں کو کیسے ذبح کیا؟ ذہنی طور پہ کیا. سورۃ آل عمران میں آپ پڑھیں گے، واللہ عقل مار دی. وہاں لفظ ہیں قرآن کے جو آپ کو آج کے دور کے مسلمانوں کے پرابلمس دکھاتے ہیں. مت مار دی، سوچ بدل دی، ان کی پرسیپشن چینج کر دیے، کانسیپٹس ان کے چینج کر دیے، اور ہم مسلمان بڑے خوش ہیں. کہا یسومونکم سوء العذاب، یوزب ہونا ابناکم وجستحیونا نساکم. یہاں دیکھیں نساک کا لفظ آیا ابنا کی جگہ بنت کا نہیں آیا، غیرت دلانے کے لیے. عورتوں کو وہ زندہ کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ ان کو اپنی لونڈیاں بنا سکے، ان کے ساتھ اپنے دوسرے معاملے کر سکے. اللہ تعالیٰ نے یہاں غیرت کا لفظ مسلمانوں کے سامنے بولا کہ تم شرم کرو، جب تم اپنی کتابوں سے کٹتے ہو تو تمہاری اپنی عورتوں کی کوکھوں سے دشمنوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں. آپ کو پتا کہ محمد بن قاسم کس جملے پہ چل پڑے تھے اپنے علم کے سفر کو چھوڑ کر جہاد کے سفر پہ؟ کہ ایک عورت نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم تو پڑھنے جا رہے ہو، پڑھتے پڑھاتے ہو، اور ہم ہندوؤں کے بچے پیدا کر رہی ہیں عورتیں. یہ لفظ سن کے وہ رہ گیا کہ میں تو یہ کتابی کام کر رہا ہوں، مجھے عملی کام کرنا ہے. اور گئے اور انہوں نے جا کے حملہ کیا اور مسلمانوں کی مدد کی. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک انسان غور کرے. اگلا نقطہ دیکھیے کہ یہ سب کر کون رہا تھا؟ فرعون کروا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بلاؤ من ربکم، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی. کیا پتا چلا کہ حکمر بڑی طاقتوں کا جو ظلم ہوتا ہے نا، بظاہر دیکھنے میں وہ ان کا ظلم لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ روایت آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ آسمان پہ، میں نیچے ہوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پہ تمہارے اچھے لوگ حکمران ہوں تو یہ میری اس قوم پہ رضامندی کی علامت ہے، اور اس کا اپوزٹ میرے غضب کی علامت ہے. اب آج ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے. اللہ کی طرح اللہ چاہے تو پکڑ سکتے دشمنوں کے ہاتھ، ایک سیکنڈ میں ہاتھ شل ہو جائے جو مسلمانوں پہ اٹھتا ہے، لیکن کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ اس لیے کہ ابھی وہ مسلمان ہی نہیں تھے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نا، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو. اس میں قوموں کو ایک نقطہ ملتا ہے کہ جب بچے کو انجیکشن لگتا ہے نا، آپ دیکھیے امیجینیشن میں لائیں، ماں اپنے بچے کو خود انجیکشن لگواتی ہے، کیا اس میں شر ہوتا ہے؟ نہیں، بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انجیکشن لگوا ماں رہی ہے تو اس میں میری خیر ہی ہوگی. اس میں ایک تو یہ نوٹ کریں، ہر شر میں خیر ہے. آج اگر مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے نا، تو جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اس میں خیر ہے، کسی سے تو ہماری سوئی بھی غیرت جاگ رہی ہے، اسی سے تو گرج پیدا ہوتا ہے دلوں میں. ہاں، اور دوسری بات دیکھیے کہ بچے کو پھر ماں ہی میں سکون ملتا ہے. آج اگر ہمیں دنیا میں امت مسلمہ پہ ظلم و ستم اور اپنی ظاہری یا دوسری زندگی میں دکھتا ہے، تو آپ مان لیجئے کہ یہاں ہمیں اللہ ہی کے دامن میں آنا پڑے گا. اب اللہ کی گود میں تو ہم نہیں آ سکتے نا جیسے ماں کی آتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہی وسطین و بصبر و صلات، تم میری طرف آؤ، پھر دیکھو میں تمہاری کتنی مدد کرتا ہوں. اور پھر مدد آئی. اس وقت بنی اسرائیل کیا تھے؟ یہاں پہ ایک جملہ نوٹ کراؤں گی، غور سے سنیے گا. ابھی تک بنی اسرائیل کون تھے؟ غلام تھے نا، اور نیک تھے. اللہ کی مدد کیا آئی؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے پھاڑ دیا تمہاری خاطر دریا کو، پھر ہم نے تم کو نجات دی. وَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے اور فرعونی ڈوب رہے تھے. سن چکے ہیں نا اس منظر کو. یہاں دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا جو اس وقت تک کا صبر تھے نا، یہ کون سا صبر ہے؟ جبری صبر ہے. صبر کی کل بات کی ہے نا، بس صحیح نبی صبر. میں صبر کے 10-12 پہلو آپ کو لکھاؤں گی آگے جا کے، لیکن آج صرف یہ لکھ لیں کہ صبر ایک وہ ہوتا ہے جو مجبوری میں کرایا جاتا ہے، اضطراری صبر، فورسڈ پیشنس، اضطراری صبر یا جبری صبر. یہ کون سا ہوتا ہے؟ جب بندے پہ کوئی مشکل ڈال دی جاتی ہے، بیماری، تکلیف، اب روئیں دھوئیں جو بھی ہے، خود ہی گزرتا ہے نا. ابھی تک بنی اسرائیل کا جو صبر تھا نا، یہ مجبوری کا صبر تھا، اور اس میں آپ دیکھیے یہ کامیاب ہے. تبھی تو اللہ نے سمندروں میں راستے بنا دیے، ان پرسن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پکڑ دی. سورۃ الاعراف آیت 130 میں ہم پڑھیں گے ان 8 عذابوں کا قصہ جو فرعون کی اس بڑی پکڑ سے آئے تھے پہلے، کہ جس میں ان کے اوپر قحط اور بیماریاں اور خون اور دم اور کیا کچھ ان کے اوپر ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی چیز میں ان کو رکھ دیا. اب یہاں آپ دیکھیے کہ فرعون کے ڈوبنے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل جو ہے نا، اس اضطراری صبر سے نکل گئے اور اختیاری صبر اب آگے ہوگا. وہ کون سا ہوتا ہے؟ نعمتوں کا. سمجھ لیں، اپنے لفظوں میں سمجھیں، پھر بعد میں لکھیے گا. ایک وہ صبر ہوتا ہے جو برے دنوں میں ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہم سب اس کو سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. मैया ताले घर में भी जाके कहते हैं सब्र करो, चोरी हो जाए तो भी कहते हैं सब्र करो। ये बहुत आसान होता है, लोग कर लेते हैं। दूसरा सब्र होता है जिसको आप इख्तियारी सब्र कहते हैं, पेशेंस विद योर चॉइस। ये खुशियों का सब्र होता है, जब अल्लाह नेमते देता है, माल देता है, आजमाइश। यहां क्या था, पहले गुलाम थे, पिसे हुए थे, अब जूतियां सीधी कर रहे थे ना फिरौन की, लेकिन मजबूर थे, सब्र करते गए। अल्लाह की मदद आई, मुल्क बन गया, मिस्र के असबाब खत्म हुए, अल्लाह ने शाम के रास्ते खोल दिए। आगे आप देखिएगा, अब इसके बाद जो इनका सबर है ना, वो इनकी चॉइस का सबर है जिसमें ये फेल हो जाएंगे। आप इसको जोड़िए जरा अपने ऊपर। 1947 से पहले हम मुसलमान क्या थे, बरेसगीर वाले, जबरी सबर था। पाकिस्तान बन गया, वल्लाह ही मैं पूरे शौक के, जिस तरह उस वक्त समंदर में रास्ता बनना एक मौजजा था ना, इस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का वजूद भी एक मौजजा था। कोई असबाब, कोई हालात नहीं, ये आगे कहीं मौका मिला तो आपको हिस्ट्री सुनाऊंगी। ये सिर्फ अल्लाह ने बनाया था, और पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। अगर आज इसकी कदर हमने नहीं की ना, तो आज हम बनी इसराइल के उसी दोराहे पे खड़े हैं कि जहां फिरौन के डूबने के बाद यती हूं ना फैल अर्थ, एमलेस लाइफ है हमारी। 60 ईयर से ऊपर हो गया हमें, और अभी तक इधर वॉन्डर ब्लाइंडली फिर रहे हैं। ना हमने वो काम किए जो करने थे, ना हुए। ये वक्त बड़ा मुश्किल होता है। आज हम पाकिस्तान बना के उनको ज्यादा खुशी दे रहे हैं जितना हम उनके पास थे। कल तो उनको, गैरों को आप देखिए, हमें जॉब्स भी देनी पड़ती थी, हमारे लिए कुछ मेहनत रोटी पानी का हमारा करते ना, रहते आज हम अपने मुल्क में हैं और गुलामी हम उनकी करते हैं। तो ये कौमों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत पकड़ है। फिर एक और चीज देखिए कि दरिया का फटना बनी इसराइल के लिए नेमत था, लेकिन फिरौन के लिए अजाब था। तो इसे एक अमल की बात नोट करें, किसी के पास कोई नेमत दे के कभी रश्क ना करें, ये ना कि मुझे मिल जाए, हो सकता है उसके लिए वो नेमत है, आपके लिए वो नुकसान की चीज बन जाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने दरिया को फाड़ा और फिरौनी सामने डूब रहे थे, और बनी इसराइल क्यों फिरौन को वहां डुबोया, ताकि लोगों को यकीन आ जाए। और आप देखिए कि उसकी डेड बॉडी पानी पे आ गई, पानी ने भी उसको कबूल नहीं किया। आज आप उसकी शक्ल देखें तो खौफ खाएं, पट्टियों में बंधा हुआ फिरौन, आज भी उसकी लाश डिस्कवर हो चुकी है, दिखाएंगे आपको, आप जाएं तो वेबसाइट पे है, मेरा ख्याल है, आप देख लीजिए कि कराहत आती है देख के, कि जो अल्लाह के नाम के आगे बड़े बनते हैं, नुकसान देते हैं, उनका हाल क्या होता है। बहरहाल बनी इसराइल का एक दौर पूरा हुआ। यहां से इस हिस्से से हमारे लिए अमल की बात क्या है, कि जो कौम अपने लिए कुछ मेहनत करती है, कोशिश करती है, अल्लाह की मदद आती है। हकीकत में कुर्बानियां दी हम लोगों ने, हमें भी जमीन का टुकड़ा मिल गया, लेकिन असल आजमाइश आगे आती है। और जब अल्लाह किसी का हाथ पकड़ लेता है तो कुछ हो, फिर उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता। और इससे पता क्या चलता है कि जालिमों का अंजाम बिलाहर बुरा होता है, वो माजी के हों, हाल के हों, या मुस्तकबिल के हों। अब क्या हुआ, बनी इसराइल आजाद, पहला मिशन पूरा। बनी इसराइल कहाँ पहुंच गए मेरे इशारों से बताइए, इधर क्या है? शाम नहीं पहुंचे, अभी तीह में पहुंच गए हैं, यहां आ गए हैं। यहां आके इन्होंने क्या किया, जिहाद का इनकार। हम नहीं करें, सूरह आराफ में पढ़ेंगे हम। अल्लाह ताला डायरेक्ट मूसा के दूसरे मिशन पे, पहला मिशन इज कंप्लीट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अब के वाइज वात न मूसा 40 लैलतन, और जब हमने वादा किया या लिया मूसा से 40 रातों का, सुम्मत तखस तुम उलेचला में मौजूदगी में बछड़े को माबूद बना लिया, वन तुम जालिमून, और वाकई तुम जालिम थे। तुम माफ आओ नान को मिम्बादी का, फिर हमने तुम्हारा ये जुर्म भी माफ कर दिया, क्यों, लाअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये है अब मूसा की जिंदगी का दूसरा सफर। अल्लाह ताला अब इनसे कुछ इल्मी काम करवाना चाहते थे, भीड़ बनी हुई उम्मत कौम को, भीड़ को उम्मत में बदलना चाहते थे। बनी इसराइल की इस्लाह के लिए अब एक किताब की जरूरत थी। तौरात के नजूल का वक्त अब आ गया है, और आप देखिए हर नबी को तकरीबन 40 साल की उम्र में ही नबुवत मिली, या इनको नबुवत तो मिल गई हुई है लेकिन किताब देनी थी। अब एक क्या था कि मूसा बैठे होते सबके बीच में इज्तमाई कामों में, आप इसको यूं सोचे कि मूसा के अभी तक के जो काम थे ना, ये मैनेजमेंट के थे, जाहिर है कौमों के रूज जवाल, उससे लड़ उससे झगड़ और सारा सियासी रंग है इसमें। अब इस इतनी जो तबीयत पे बोझ होता है ना, उसमें इल्म जज्ब नहीं होता, अल्लाह ने कहा यहां से निकलो थोड़ी देर, इनको को मुझे अलग छोड़ दो। वाइज वाद न मूसा अरबईना लैला, 40 रातों के लिए कहा चलो। शुरू में 30 के लिए गए थे, फिर 10 और बढ़ा ली, दिल ही नहीं चाहा मूसा का आने को, दिन बढ़ा लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला से अल्लाह 40 हो गए। सूरत अल अराफ में हम पढ़ेंगे। टोटल 40 डेज थे। वहां जाके क्या करते? अल्लाह से बातचीत करते। कितनी थी क्या थी, कोई कहता है ज़ीकात से लेकर के दिन थे, जितने भी थे हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बहरहाल ये वक्त था कि जिसमें टोटल 40 डेज तक उन्होंने एतकाफ किया, कह ले जिक्र किया, अल्लाह को याद किया, अपनी रूह को काम दिया। यहां से पता चलता है कि इल्म के लिए यकसुई बहुत जरूरी है, फोकस्ड होना पड़ता है। अब आपका भी ये रास्ता शुरू हो गया जो मूसा का था। अगर आप चाहते हैं ना कि इस कोर्स को इसका ड्यू हक दें, तब आपको अपनी काउंसलिंग्स और आपको अपनी पार्टीज और गेट टुगेदर्स और हर जगह मौजूद होना सिला रहमी के नाम पे, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्योंकि बात सिर्फ उन 2-3 घंटों की नहीं होती जो आप सिर्फ एक मेहंदी खाने गए, बात उसके बाद में आपके जहन पे उभरने वाले उन सारे नकूश की होती है जो उभरते रहते हैं। और दूसरी बात है, इतनी ग्लैमरस पार्टी से होके आके आपको ये पाबंदी अच्छी लगनी है। मंडे का दिन बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए अक्सर, और मैंने उसका जो नतीजा निकाला है वो ये कि वीकेंड कहीं ना कहीं पाए गए थे, और वहां से जो असरात आए सारी रात शादी में रहे, दावत में रहे, खाने पे रहे, तो कुछ ना कुछ वक्त अपनी तन्हाई के लिए रखे। आप देखिए कि अल्लाह के नबी गारे हिरा में जाके रहने लग गए ना, तन्हाई के बगैर इल्म का काम नहीं हो सकता। इसलिए इल्म का काम करने वाले को बड़ा पुरसकून माहौल चाहिए होता है। अपने घर के अंदर आपके इतना गंद है, इतनी चीजें हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, टूटी खोले पानी कोई नहीं, चीजें पड़ी हुई हैं, गिर रही हैं, टूट रही हैं, फूट रही हैं, आपका जहन फोकस नहीं होता। आप यहां बैठे हैं, टेढ़े मेढ़े से एक बात नहीं निकलेगी, मैं पढ़ के कोई किताब लूंगी और सुना दूंगी, लेकिन मैं जुबान से बोल नहीं सकती, तो इसके लिए फोकस्ड होना पड़ा। अच्छा, फिर इससे 40 इंच का चिल्ला भी साबित हो गया? ऐसा कोई साबित नहीं होता। बस चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ चीजें ऐसों को लेकर बस लोग एक कानून बना लेते हैं, आप 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन कुछ भी रह सकते हैं, कहीं भी दीन के काम पे रहें। आप पढ़ने बैठते हैं ना शाम को, वो 1 घंटे इतकाफ की नियत कर लिया करें। अब उसमें ये नहीं कि मुंह सर लपेट लेना है, बात नहीं करनी, इशारों से बोलना है। बाद लोग वजीफा शुरू कर ले, बात ही नहीं करते, नहीं जी हम इस वक्त वजीफे की हालत में, नहीं इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करूंगा। इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन इसमें खुशू और खुदू की बात है। अब देखिए लीडर कहाँ गए, अब यहां से मेरे इशारों से देखे ना, यही थे ना, यहां से वो दूर एक पहाड़ है वहां चले गए कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, तुम पीछे रहो। पीछे देखिए जरा क्या हालात है, अल्लाह की पनाह, लीडर जाए और पीछे के हालात देखिए। सुम्मत तखस्तुम अलैहिस्सलाम मिन बादी वअंतुम ज़ालिमून, जो ही लीडर निकला ना तो आप पीछे वालों ने जरा पहले तो सुख का सांस ले, शुक्र है चले गए, अब तो हम आसान है, लंबी सी अंगड़ाई ली होगी कि रिलैक्स नाउ। जब लीडर सर पे नहीं होते, फितने यूं उठते हैं कि अल्लाह की बना, आप इधर मुंह करें पीछे से ऐसे लगेगा कि फितना आपके पाँव के नीचे ही था, जो हाथ पाँव हटा फितना उठ गया। ये हमेशा होते हैं, लोग मुंतजिर होते, चले गए ना, अब तो नहीं आएंगे ना, अब तो बस चले गए ना। बस लोग जब बात करते हैं, उनके बात करने के अंदर से बू आ रही होती है तासुब की, और बाज़ लोग बड़े अपने साथ ही रो रहे से जाएं और गैर खुश हो रहे होते हैं, फिर चले गए, अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, और फिर जब आपको देखते हैं तो बड़ा हैरान होते हैं, फिर आ गए। हाँ, ये हालात होते हैं। आप अपने ऊपर लेके देखें, आप घर में होते हैं तो सारे हालात ठीक है, आप जरा अम्मी अबू जाएं तो सही, कहीं 4 दिन के लिए पिकनिक पे, फिर देखिए बच्चे जो जोश करते हैं। इधर क्या हालात हुए कि देखिए, अब यहां समझिएगा, बहुत डरने की बात है, सच्ची बात है, क्योंकि हम सब दीन के लिए निकले हुए इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद भी ईमान के लेवल मेरे आपके फर्क है, हम सबके फर्क है। ये वो कौम है जो फिरौन के जंगल से दरियाओं में रास्ते से गुजर गई, लेकिन आपको लगता है क्या पूरी बनी इसराइल का एक ही ईमान था? कुछ लोगों का ईमान था जिसने दरियाओं में रास्ता बनवाया, लेकिन कुछ मुनाफिक और खोटे लोग भी आते हैं। ये एक टीम वर्क मिल जाता है, वो कहते हैं ना कि एक बंदा छिक्का लगाता है पूरी कौम की फतह हो जाती है। बस दफा ग्रुप्स में, लोगों में, सिर्फ कुछ लोगों के ईमान की वजह से मेरे जैसे कमजोर लोगों को भी बेनिफिट्स ऑफ डाउट मिल जाते हैं। ऐसे ही हुआ, इस कौम में आने वालों में एक शख्स मुनाफिक था, खोटा था दिल का। जो ही मूसा निकले, बस उसको बातें बनाने का मौका मिल गया। अच्छा चले गए, अच्छा कब आएंगे, देखो कब आते हैं, क्या 30 दिन क्या। खैर वो इधर उल्टी पुल्टी बातें करता रहा सुनाने। अब उन्होंने कहा चुप करो, वो पढ़ने गए हैं, वो काम पे गए हैं, कोई खुश होने तो नहीं गए, हमें दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। सबर करके ये बैठा रहा बैठा रहा। मूसा अलैहि सलाम जब गए तो अपने साथियों को बता के गए कि मैं 30 दिन के बाद आऊंगा, और हर एक को बताना जरूरी भी नहीं होता, फायदा भी नहीं होता उसका, क्योंकि वो भी 30 दिन की छुट्टी देंगे, साथी भी 30 दिन की छुट्टी दे देंगे, हम भी तभी आएंगे जब वो आएंगे, तो वो तो फिर उसके लिए आएंगे, अल्लाह के लिए नहीं आएंगे। हुआ क्या कि मूसा जब वहां गए तो उनको तो बड़ा मजा आया, वाह ये तो एक नई दुनिया, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। मूसा ने कहा अल्लाह जी मैंने अभी नहीं जाना, या आप सोचे जरा कभी अब हज उमरे पे गए हो, क्या दिल होता है आखिर में, यूं टप टप के नमाज भी ना पढ़े, वहां काबे को देख देख के रोते हैं, या आके सुन्नतों को जिबा करे शेव करे रोज अपनी सुन्नतें, और वहां रोजे की जालियों को चूम के रोते हैं, ये इंसानों का मसला। मूसा ने कहा अल्लाह ताला और दिन चाहिए, अल्लाह ने 10 दिन और, कहा और रह ले कोई बात नहीं, अब मेहमान खुद तो नहीं जाता, रहना चाहे तो मेजबान कहाँ छोड़े। जू ही 31वां दिन हुआ ना, ये मुनाफिक नमाज शख्स उठा, कहा इधर आओ अब नहीं आएंगे, चले गए हैं। दो कन्ना सी या मूसा व रब्बा, मूसा भी भूल गया उसका रब भूल गया, खबर फैला दी कि मूसा फौत हो गए और उसने कोई नहीं आना। अब कौम ने जरा रोना धोना डाला, हाय मूसा चला गया मूसा चला गया, कहा गम ना को, अच्छा जी अब हमें कौन सिखाएगा, हमारा तो लीडर चला गया, वो तो हमारा नबी था। तो फिर उसने कहा अच्छा इधर आओ मैं तुम्हें बताऊँ एक बात, अगर तुम मुझे थोड़ा मौका दो ना तो मैं बताऊँ। मिस्री कौम जो थी ना, अब वापिस इधर मेरे हाथ पे आ दे, राइट एंड लेफ्ट, बाहर वाले तो नहीं समझ रहे, आप तो समझ ही सकते हैं, मिस्री कौम जो थी ना ये बुतपरस्त थी, ये करते थे यानी गौ माता की पूजा करते थे, गाय या कौ जो है ना मिस्री कल्चर में आज भी बड़ी अहम है, मैं जाके देख चुकी हूँ, आप इनके चौराहों पे देखें, इधर मुख्तलिफ जगहों पे देखें ना स्टेचूज बने होते हैं, ये गाय की पूजा करते थे। अब आप सोचिए कि जब ये सारी कौम बनी इसराइल की मिस्र में रहती थी तो वो देखते थे ना अपने आकाओं को पूजते पाजते, नतीजा क्या हुआ कि इनके भी दिल में थोड़ी थोड़ी मोहब्बत आ गई। यहां भी आप पढ़ रहे हैं, अब आगे ये सूरत बकरा है ही सूरत गाय की, आगे 2-3 दफा इस बात का जिक्र आना है, अभी समझ ले। इन्होंने इनको भी ये बड़ा अच्छा लगता था, और याद रखे जो मुशरिकाना दीन होता है ना ये बड़ा कलरफुल होता है, रंग रौनक, कहीं रंग डल रहे हैं, कहीं खुशबुएं फेंकी जा रही हैं, कहीं रंग कोई कुछ कहीं कुछ, ये चिराग जल रहे हैं और कहीं कुछ ना कुछ, दिल में ये बड़े मरूब थे उससे, लेकिन ऑफकोर्स मुसलमान थे। तो अब ये तो नहीं कह सकते थे कि हम होली मनाएंगे, लेकिन ये अपने ही त्योहारों में कुछ ऐसा काम करना चाहते थे। जू ही ये इधर आए, इधर एक बड़ा खूबसूरत वाक्य हुआ जिसका यहां जिक्र नहीं हुआ। आप सोचिए ये मेरे स्टेज की जो दीवार है ना, ये समंदर का किनारा है और मैं समंदर में बैठी हुई हूँ। जब ये यहां से मूसा के साथ दरिया पार निकले ना, तो ये जा रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि उधर एक कौम है और वो एक बछड़े की, गाय का बछड़ा बना के उसको पूज रहे हैं। तो ये बनी इसराइल बच्चों की तरह वहीं खड़े हो गए, मूसा हमें भी बना दे, वो जैसे बच्चे नहीं हर दुकान पे खड़े हो जाते हैं, हमें ये भी लेना है ये भी लेना है। सोचिए एक जिंदा फिरौन जो खुदा बना बैठा, तो उससे अल्लाह ने इनको निजात दी, और इधर आके तो एक पेगन कल्चर से मुतासिर होके कहने लगे कि हमें भी जरा ये गाय बना दी जाए। मूसा ने सर पीट लिया, तुम कितने जाहिल हो, अल्लाह ने तुम्हें उस बुत से ना निजात, उस जिंदा खुदा से निजात दी, ये बुत पूछते हो, हर उस वक्त दुबक गए, सॉरी सॉरी हम नहीं करेंगे। जू ही मूसा उधर गए, सामरी को वो लूप होल मिल गया, वो याद है तुम्हें वो कितने प्यारे लग रहे थे गाय के बच्चे को भी पूछते जाते करते, अच्छा हाँ, कहने लगा मैं भी ना तुम्हें एक बना दूं, कहा हाँ सच्ची कुछ बना दो, आजकल हम बहुत मिस कर रहे हैं हमारा खुदा नहीं। उसने सबके जेवरात लिए जो ये अपने साथ लेकर आ गए थे, उनको पिघलाया और एक बछड़े की शक्ल का बछड़ा बना दिया, जिसको कुरान आगे जाके इजल कहता है, ये बना दिया और ये बैठ के उसकी पूजा करने लगे। मूसा को वहां खबर मिली, अब फोन तो नहीं था कि फौरन मिलती, वही के जरिए खबर मिली कि मूसा जी वापस जाइए, पीछे तो हालात क्या हो गए, हो सकता है मूसा 40 रातों से भी ऊपर आगे बढ़ा लेते, लेकिन पीछे से खबर बुरी मिल गई कि अल्लाह की पनाह मैं तौहीद लेने जा रहा हूँ, ये कौम शिर्क में आ गई। जब वापस आके देखा तो उफ अल्लाह की पनाह, 70,000 लोग जो थे वो बछड़े की पूजा का जुल्म कर चुके थे। ये अल्लाह कह रहे सुम्मत तखस्तुम अलेजला मिम बादी हिवान तुम जालिमोन, तुम कितने जालिम हो। अच्छा आज हमने तो नहीं ऐसे कोई बछड़े बनाए हुए ना, हम भी देखे हमारे घरों में भी कोई ऐसे गाय माता के पूजा के बछड़े तो नहीं बने हुए, हमारा तो बहुत बुरा हाल है, आगे जाएंगे तो और चीजें दिखेंगी। अब हुआ क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा, कहते कि 400 साल से ये बनी इसराइली जो थे ना मिस्र में मुकीम थे, ये 40 साल तो मूसा के सामने हुए ना, 400 years तक ये वहां थे और उसको देखकर खुश हो चुके थे। और दूसरी बात यह है कि बनी इसराइल जो बड़ी मुद्दत से फिरौनियों की गुलामी में थे, और फिरौन के जो लोग थे ना, जो मतलब जिसको आप कह लीजिए कि उसके दरबारी और वो सब कुछ होते, उनका हाल ये था कि उसमें अपने मजहब को बहुत वो ग्लैमरस करते थे। आप समझिएगा इस बात को, जो मुशरिकाना मजहब होता है ना उसको प्रमोट कैसे करते हैं। मैंने बहुत पहले ये पढ़ी थी लेकिन याद है बहरहाल, कि कोई इंडियन मूवी, आज से ये काफी साल पहले की बात है, आज का मुझे नहीं पता क्या कानून है, कोई इंडियन मूवी जब होती है ना अप्रूव, तो उसकी शरायत में एक शर्त है कि इसमें ए 4-5 गाने हो, वो तो आपको पता ही हो चलते कूदते, लेकिन एक ना एक मजहबी क्लिप होना लाजमी है जिसमें इनकी कोई यात्रा, कोई किसी जगह जाना, कोई घंटियां बांधना, ये उन्होंने अपना मजहब लोगों को इससे दिखाया। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि हमारे बच्चों को अपने दीन से ज्यादा हिंदू कल्चर पता है अगर वो आपके घर में फिल्में चलती हैं। इसकी मिसाल एक सिस्टर से सुनी थी कि किसी शादी में गए और बच्चा बार बार कह रहा है कि अम्मी शादी क्यों नहीं हो रही, अम्मी शादी क्यों नहीं हो रही, तो कहा बेटा ये शादी ही तो है और क्या होती है। कहा नहीं, अभी दूल्हा दुल्हन ने आके गिर फेरे तो लगाई नहीं। अब ये एक छोटे मासूम बच्चे का सवाल है ना, तो कल्चर इस तरह से आता है। इन्होंने उस कल्चर को देखा हुआ था अपने बड़ों की सूरत में, जैसे वो मेरा ख्याल है कि जब घर में मालिक नहीं होते तो मुलाजमें जरूर एक दफा तो उनके बेड पर लेटती, सामने तो नहीं करती, तो इनके लाशौर में छुपा हुआ था कि ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा ही होगा हम करते हैं। और याद रखिए कि दिल आजाद हो जब तक ना हो जाहिरी आजादी फायदा नहीं देती, इनके भी दिल नहीं थे आजाद हुए, बस वक्ती तौर पर ये हो गए थे। नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने इस तरह के काम किए। और एक और बात याद रखिए कि अब कौम अलग हो गई है, तरक्की करने लगी, लेकिन अभी कानून कोई नहीं है, मूसा अभी इनकी तरबियत कर रहे हैं, तो ऐसी गलतियां फिर कौमों से होने लगती हैं जो कि अल्लाह ताला ने इनके सामने रख दी। खैर, मूसा अलैहि सलाम ये सारी बातें सुन के वापस आए, उनको गुस्सा आ गया, अल्लाह ताला ने मूसा को भेजा। अब इसका जिक्र यहां नहीं है लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसका तذکرہ मिलेगा कि फिर ये कत्ल करवाए गए थे, क्योंकि उस दौर में ये मुर्तद हो गए थे अपने हिसाब से, और मुर्तद की सजा कत्ल थी, और कत्ल के लिए फिर एक दिन में 70,000 लोग जो थे वो कत्ल करवाए गए। ये एक अल्लाह ताला का कानून है बेलाक है जिसके अंदर अल्लाह ताला ये मामला करते हैं। बस जहां इतना कह दिया सुम्मा फ़ौन अनकुम मिन बादी ज़ालिका, फिर हमने तुमको इसके बाद माफ कर दिया, लअल्लकुम तशकुरून, ये लअल्लकुम तशकुरून को हाईलाइट कर ले, इसमें बड़ा खूबसूरत नुकता है। अल्लाह ने एक चांस और दिया, क्यों दिया, शुक्र करो। ये कौन सा शुक्र है, नेमतों को पाकर इसका इस्तेमाल करो। अल्लाह ने आपको और मुझे पाकिस्तान दिया 14 अगस्त 1947 को, फिर क्या हुआ 65 में, क्या हुआ, अल्लाह ने मुसलमानों को पता दे दी, क्यों दी, लअल्लकुम तशकुरून। ये मतलब है कि अल्लाह ताला कौमों को बार बार मौके देता है कि तुम संभल जाओ, संभल जाओ, इस नेमत की कदर करो, इस नेमत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने इनको ये दिया, और अल्लाह ताला की आदत सुन्नत यही है कि वो ये काम करता है, और उसने ये सारा मामला कर दिया। खैर, उसके बाद क्या हुआ, वइस कुल तुम या मूसा लन नूमिना लका हत्ता नरल्लाहा जहरा, और जब तुमने कहा कि मूसा हम हरगिज तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अल्लाह को खुल्लम खुल्ला ना देख ले, फिर क्या हुआ, तुम अफ़ौन अनकुम मिन बादी ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने तुमसे दरगुजर किया, यानी तुम्हारा ये जुर्म भी माफ कर दिया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये बात क्या है, जब मूसा अलैहिस्सलाम वापिस आए, इनका कत्ल का मामला रफा दफा करवा दिया, उसके बाद मूसा को अल्लाह ताला ने जो तौरात दी थी वो दिखाई, ये वाकयात आगे आनी है लेकिन यहाँ सिर्फ इशारतन सुन लेते हैं हम लोग। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके सामने किताब पेश की तो कहने के हम तो नहीं मानेंगे, पता नहीं आप वहां बैठ के किससे सुन के आ गए, हमें तो नहीं पता कि ये अल्लाह ने भेजी है, आप ऐसा करें कि हमारे साथ के कुछ लोग ले जाएं, वो खुद देखें कि आपके ऊपर किताब उतरती है, फिर हम मानेंगे। 70 लोग इनके चुने हुए जो कम अज कम इनमें मजहब की कुछ समझ रखते थे, ये मूसा के साथ गए। वहां जब गए तब जाहिर मूसा पे वही उतरती थी, एक माहौल था, जब वहां गए तो अब इनको तो अल्लाह नहीं दिख रहा ना, अल्लाह ताला की ये चीजें दिख रही हैं, तो इन्होंने वहां जाके ये अपनी हिम्मत से और अपनी हद से बड़ा हुआ मुतालबा किया कि नहीं, अभी भी नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह हमारे सामने ना आ जाए। अल्लाह ताला को देखने का ये मुतालबा कोई इनकी मोहब्बत वाला मुतालबा था नहीं, ये कौन सा था, हुज्जतें करते थे, तनकीद करते थे कि ये होना कोई नहीं। इस पे इतना गुस्सा आया कि अल्लाह ताला ने आसमान से एक बिजली भेजी, वो 70 के 70 लोग मर गए। موسیٰ بیہوش تو ہوئے تھے لیکن زندہ رہے. موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ یہ سارے مر گئے ہیں, یہ تو قوم مجھے چھوڑے گی نہیں کہ یہ وہاں لے جا کر سب کو مار دیا, آپ ان کو زندہ کر دیں. تو ثم عفونا عنکم, اللہ نے موسیٰ کی دعا پہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ, آئندہ ایسے کام نہ کرنا. اب دیکھیے یہ ہے وہ نعمتوں اور فضیلتوں کی لسٹ جو ہم سن رہے ہیں پیچھے سے, کہ اللہ جس قوم کے ساتھ اتنا کچھ کرے کیا پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب کسی قوم کو اللہ کا قانون منہ موڑے تو اس سے زیادہ ظالم اور خسارے والی کوئی قوم نہیں ہوتی. کل موسیٰ کی قوم کا یہ حال تھا, آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے جس کی وجہ سے آج ہم تکلیف میں. اور ادھر سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو قوم اللہ کی بندگی ترک کرتی ہے پھر بہت سارے بچھڑے اور بہت سارے خدا اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اب یہ معاملہ رفع دفع ہوا, اگلا دور موسیٰ کی زندگی کا پھر شروع ہوا. وہی ساتھ ہی نہ موسل کتاب والفرقان لعلکم تحتدون, اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی کتاب دی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اگر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں بھی کوئی آپ سے پوچھ لینا کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لعلکم تحتدون. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتابیں قوموں کی ہدایت کے لیے آتی ہیں, چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آتی, تعویذ بنانے کے لیے نہیں آتی, بیٹیوں کی شادیوں پہ سروں پہ گزارنے سے نہیں آتی. یہ اس پہ بات آگے ہونی ہے, یہاں صرف اشارتاً یہ بات آئی ہے, اس لیے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ موسیٰ کو تورات جو دی گئی تھی اس کے ساتھ اس کا مقصد کیا تھا. ہم اپنے اوپر لے کے تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں, کیا آج ہمیں بھی اللہ نے کوئی کتاب دی ہے؟ کیا آج ہمارا قرآن الفرقان ہے؟ کیا ہم اس سے ہدایت لے رہے ہیں؟ کسی چیز سے ہدایت لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سمجھنا پڑتا ہے. نہیں نہیں عمل کیسے کریں گے جب سمجھیں گے ہی نہیں. آپ کو یہاں سے مینچسٹر جانا ہے, آپ نے میپ نکالا اسپینش زبان میں, آپ اسپینش زبان سمجھتے نہیں, کیا آپ اس کو فالو کر کے پہنچ جائیں گے مینچسٹر؟ نہیں پہنچیں گے. تو پہلی چیز کسی چیز سے ہدایت لینے کے لیے کیا کہ آپ اس کو سمجھیں, پھر پڑھیں, پھر عمل کریں. تو آج ہم مسلمانوں کا کتاب کے ساتھ جو حال ہے اس کو دیکھ لیجیے. فرقان, حق اور باطل کا فرق کرتی ہے یہ کتاب. آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے؟ صحیح اور برے کا فرق پتہ چلتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بھی اللہ نے اس کتاب کو, قرآن کو فرقان کا. اسی طرح یوم بدر مسلمانوں کے لیے یوم الفرقان ہے, کیونکہ اس دن حق اور باطل فرق ہو گیا تھا. تو لعلکم تحتدون کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہوئے. اب دوبارہ پیچھے سے اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو انہوں نے بچھڑا پوجا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ معاملہ کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا, لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے, يَا قَوْمِ, اے میری قوم. نوٹ کریں, نبی اپنی قوم کو چھوڑ نہیں رہے غلط کام کرنے پہ, سمجھانا پھر بھی ضروری ہے. اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ, بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, بچھڑے کو بنا کر. کیا بنایا بچھڑے کو؟ یہ نہیں لکھا ہوا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ مَعْبُودًا, معبود نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات ہی نہیں کر رہے. تم نے بنا لیا اس کو معبود تو بنا دیا, بس تم نے بچھڑا بنایا, اب کیا کرو؟ دیکھیں کیا کیا اس قوم نے. نمبر ایک شرک, نمبر دو ناشکری نعمت کی, اور نمبر تین دیکھیں یہ دین سے نکل گئے, شرک کر کے دین سے نکل گئے, مرتد ہو گئے. اس کے باوجود فتوبو الی باریکم, بس توبہ کرو, پلٹ اپنے باری کی طرف. طریقہ کیا ہے ان کی توبہ کا؟ فقتلوا انفسکم, خود کو قتل کرو. بظاہر کیا لگتا ہے؟ خود کشی کرو, لیکن یہ مطلب نہیں ہے. فقتلوا انفسکم سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے, ان کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیں. بڑی بات ہے, اس میں بڑی گہری بات ہے اگر ہم اس کا حق ادا کر سکیں. اور وہ کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو شرک کرتا دیکھ کر جو لوگ چپ رہے, رہنا نہیں چاہیے تھا ان کو, اب ان کو قتل ہوتے دیکھنا پڑے گا. یہی منظر قیامت کے دن بہت سارے مسلمانوں کو دیکھنا پڑے گا. اگر آج ہم اپنے رشتہ داروں, اپنی دوستوں, اپنے خاندان کے لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھیں اور نہ جلیں کوڑے, نہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں, تو کل قیامت کے دن اس سے زیادہ زبردست دن دیکھنا پڑے گا. آج اگر اپنی اولادوں کو ہم نہیں منع کرتے نا غلط کاموں سے, تو کل ہو سکتا ہے پھر ان کو جہنم میں جلتا دیکھنا پڑے. ذالکم خیر لکم عند باریکم, اللہ کہہ رہی ہے تمہارے حق میں بہتر ہے देखिए कत्ल होना बेहतर है, हाँ, ताकि इनका तस्किया हो, इनको पता चले। फताब अलैकुम, फिर वो पलट आया तुम पे, इन्नहु वत्तवाबु रहीम, वो है ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान रहम करने वाला। यानी उनकी तौबा का तरीका देखिए कितना सख्त था। आज को मुशरिक को तो क्या उसको भी मारेंगे? नहीं, उम्मते मुस्लिमा में तौबा को बहुत आसान कर दिया गया, इसके बावजूद आज हम नहीं करते। किस तरह अल्लाह ताला कह रही है ये बेहतर है, अल्लाह का एक कानून नाफिज हो, यहां से इस्लामी हदों के लगने की तरफ भी इशारा है। अल्लाह का कानून जब किसी कौम पे नाफिज हुआ, तौरात का कानून नाफिज हुआ है ना इन पे, तो ये बेहतर है। आज लोग कह दें मुसलमानों को जे बड़े जालिम है, इस्लामी सजाएं बड़ी तकलीफ दे, तो हमें इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला जब कौमों को किताब देता है तो किताब को पाने के बाद हक और बातिल का फर्क आना चाहिए, लोगों के दिलों में तकवा आना चाहिए। जिस कौम के अंदर फुरकान खत्म हो जाता है ना, वो बेमकसद बेकार चीजों में आ जाते हैं। कल वो बछड़े के आगे बैठे थे, आज मुसलमान कौम बेहुदा चीजों में टाइम जाया करती है, खेल तमाशे देखने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती है, ख्वाहिशों के पीछे चलती है। तो इनसे बचकर अपने आप को जब हम पाक करेंगे तो फिर अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह ताला इनकी गुस्ताखियों को यहाँ देख देखिए ये असल मैसेज, जैसे आप एल्बम के सफे पलट रहे हैं 40 साल तारीख को, अब यूं पेज में ये सफा ये सफा, इसलिए यहाँ डिटेल्स नहीं है, इसीलिए इस पे देर भी ज्यादा लग रही है कि हर आयत के पीछे कुछ ना कुछ वाक्य चल रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं वइस कुल तुम या मूसा लन नूमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, और जब तुमने कहा है मूसा हम हरगिज आप पर ईमान नहीं लाएंगे यहां तक कि हम अल्लाह को देख लें कुल्लम कुल्ला, वही बात पीछे गुजर गई ना, जिक्र तकदीम और ताखीर है, ये कुरान का असलूब है। फ़ाख़ज़त कुम साइक़त वअन्तुम तंज़ुरून, बस तुमको बिजली ने पकड़ा और तुम देख रहे थे। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्र करो। यहाँ क्या पता चल रहा है, वो 70 इनके बड़े बड़े आलिम जो थे जो दोबारा जिंदा कर दिए गए, उसके पीछे भी हिकमत थी, और वो क्या थी कि तुम अब अपनी इसलाह करो। मजहबी तबके को भी अल्लाह सुब्हान तआला बार बार मौके देता है ऐसी चीजों का कि तुम अपनी इसलाह कर लो। और ये कहाँ चुने थे, सूरत अल आराफ आयत 155 के लिए आप जगह छोड़े, तर्जमा आप खुद लिखिएगा, वहां पूरा जिक्र है का कि वख्तार मूसा सबई, कि मूसा ने 70 लोग हमारी मुलाकात के लिए चुने, और यहां से ये अल्लाह ताला दिखा भी रहा था कि मरने के बाद जिंदा किए जाओगे। पता क्या चला कि जब कोई कौम ईमान और अखलाक के राजों को फरामोश कर देती है तो इसका अंजाम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह होता है। कल तो बर्क गिरी थी ना सायका की सूरत में, कहीं भूख और कहर साली है। आज के दौर में अल्लाह का कानून बदल गया, कहीं सैलाब कहीं तूफान कहीं सुनामी, अल्लाह ताला इस तरह अपनी ने के लिए तकलीफ की चीज बना देते हैं कि कौमें जब गुलामी के फंदे गले से नहीं उतार पाती तो फिर अल्लाह ताला उनको इस तरह बार बार लेके जाता है। और आज आप देख लीजिए कि उम्मत मुस्लिमा इसकी एक मुंह बोलती तस्वीर है। यहाँ तक दो वाक्यात कवर हुए हैं वादिय ती के, एक बछड़े को पूछने का और एक कोहे तूर पे जो उनके 70 सरदारों ने अपनी हैसियत से बड़ी हुई बात की। अब सिर्फ इशारतन अल्लाह ताला इसी 40 साल के अरसे में जो नेमते थी उसमें से दो नेमतों का जिक्र करते हैं। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल ग़मामा वअन्ज़ल्ना अलैकुमुल मन्ना वस्सल्वा, और ए बनी इसराइल फिरौन से निजात दिलाने के बाद हमने तुम पर बादलों का साया किया और मन और सलवा उतारा, और क्या कहा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ ये पाकीजा चीजें जो हमने तुमको अता की। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून, इन्होंने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि अपनी ही जानों पर जुल्म किया है। थे ये एक किस्म की पनिशमेंट के दौर में, लेकिन तरबियत थी। अब डेजर्ट था, सहरा था, ना बादल ना कुछ, अल्लाह ने आसमान पे एक बादल इनके लिए छोड़ दिया, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह, ये चलते तो वो बादल भी चलता, दिन को वो पूरा वक्त साया बनता, जब रात को ये कहीं रुकते तो उसमें से बल्ब बन जाते, लाइट चलती है। आजकल कोई ऐसा बल्ब, अल्लाह की कौम देखे कि आज हम पाकिस्तानी कितने भी बुरे हैं लेकिन इसके बावजूद देखिए हम पे अल्लाह के कितने इनाम आते हैं, कितनी जमीनें हमारी फसलें उगाती हैं और कितनी खैर उभरती है। तो पता क्या चलता है कि अल्लाह कौमों को नेमते देना नहीं छोड़ता, जैसे उसने आज तक हमें नहीं छोड़ी। और इसका किस्सा जो है खाओ मनो सलवा, ये कल कल से बाद अगले सबक में हम बहुत डिटेल से देखेंगे कि कौमें करती क्या है। इन्होंने मन क्या था, मीठी चीज, मन जैसे गूंद होती है ना, लाइक आप कह लें मशरूम्स, इस तरह की मीठी खुम्बियां सी होती थी, सुबह जब ये उठते चारों तरफ इनके सो मीठी चीजें होती, दरख्त तो बहुत है नहीं, यानी ऐसे बुलंदियों पे होती जैसे आप चुंगम कह लें आज के दौर में खुश होते। और सलवा के बर्ड्स, परिंदे यूं आके इनके पास बैठ जाते, बस इसको उठा ये बारबेक्यू करके खा लेते। क्या चाहिए था, स्वीट भी था मीठ भी था, लेकिन इन्होंने कहा हम नहीं खा सकते। अगले सबक में इस पे बहुत बात होगी और बहुत ही ज्यादा हम मुसलमानों का अपना आईना दिखेगा कि कल उनको मनो सलवा मिला, कितने खुशकिस्मत है, हमें तो नहीं मिला ना कुछ। अभी ब्रेक में जाएंगे तो खाना तैयार मिलेगा, घर जाएंगे तो खाना तैयार है, सुबह आते हैं तो मियाँ साहब नाश्ता साथ दे देते हैं, इससे बड़े मन सलवा और क्या होंगे आपके पास। सोचिए आज हमारे पास कितना है जी। तो अल्लाह ने हमें भी बहुत नेमतें दी हैं, लेकिन ये बात है कि हमेशा दूसरे की नेमत नजर आती है, अपनी नेमत नहीं दिखती। तो अल्लाह ताला ने इसका इशारतन जिक्र किया है, हम भी इधर इसको इशारतन करके आगे चलेंगे। खान मकसद इसमें नोट कर लीजिए, कुलू मिन तैयबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ, खाना मना नहीं है, पाकीज़ा खाओ, अल्लाह के बंदे बनो, खाने के बाद ना शुक्रिया ना करो। इस्लाम खाने पीने से नहीं रोकता, नेमतों की ना कदरी ना करो, उसको खाकर अल्लाह की नाफरमानियां ना करो। अब यहां पे आप देखिए कि वो सफर पूरा होता है, 40 साल का सफर किस लिए था, वादी तीह में से गुजर कर मुल्क शाम में जाने का। अब इनकी तरबियत हुई खूब, अल्लाह ताला ने इनकी मदद की, अब वो वक्त आ गया जब यूशे बिन नून के साथ इन्होंने मुल्क शाम में जाना है। वइज़ कुलना उद्खुलू हाज़िहिल क़रिया, और जब हमने इनसे कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फकुलू मिनहा हैसु शिअतुम रगदन, खाओ इसमें से जितना चाहो, वदखुलुल बाब सुज्जदन, और दरवाजे से गुजरो तो सर झुकाओ, हित्ततुन, और जुबानों पर हित्ततुन हित्ततुन कहना, करेंगे क्या, नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे, वसनजीदुल मुहसिनीन, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे। यहां से समझिएगा थोड़ी सी बात कि जब बैतुल मकदस फतह हुआ तो इस आयत में अल्लाह ताला फतह के आदाब सिखा रहा है, बल्कि अगर किसी को बुरा ना लगे तो जश्न आजादी मनाने का तरीका सिखा रहा है। ये लफ्ज जश्न इस्लाम का लफ्ज नहीं है, लेकिन एक कौम को फतह मिली, एक मुल्क कॉन्कर कर लिया, इतने साल से कोशिश में थे। आप सोचे ना बैतुल मकदस की फतह के पीछे अगर 40 साल की हिस्ट्री और इधर 400 साल का रोना धोना है जो मिस्र में गुजरा, तो आज पाकिस्तान के लिए भी तो कितने साल की गुलामी पहले बरेसगीर पाक को इनमें, और उसके बाद फिर वो एफर्ट्स जो पाकिस्तान हासिल करने के लिए की, हम क्या करते हैं उसके जवाब में, 14 अगस्त का जश्न और नाच कूद के दिखाते हैं कि पाकिस्तान हमारा है। वो कौमें जो तीर तलवार नहीं उठा सकती, कलम नहीं उठा सकती, वो तौसो रबाब भी तो उठाती हैं, तो वो मिल्ली नगमे भी गाती हैं, तो नाच नाच के, और उनके जवान भी कौमी नगमे गाते हैं, ठीक है, दिल में ईमान पैदा होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको कहो कि अमली तौर पर मुल्क के लिए क्या कर सकते हो, तो हम परेशान जाइए। अल्लाह कहता है कि दाखिल हो कैसे, किसी बस्ती में जाओगे तो किस तरह, सुजदन, आजजी के साथ, यहां सजदे से नहीं है, आजजी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि जब आप किसी जगह फतह याब होके जाते तो आपकी सर मुबारक, आपकी दाढ़ी जो है ना, आपकी ऊंटनी के खुजावे से लगा होता, झुके हुए, कोई फख्र नहीं। जिस जंग में फतह होती सारा लश्कर पहले जाता और अल्लाह के नबी आखिर में आते मदीना में, ये हाल है। और जुबान पे इस्तग़फार, खिता तुनके झाड़ दे, इसका लफ्जी मान होता है झाड़ दे, यानी हमारे गुनाहों को झाड़ दे, जैसे आज हम कहते हैं ना इस्तग़फिरुल्लाह, तो यहूदियों के लिए कलमा हित्ता था, हित्ता हित्ता। इस कौम को एक और बड़ी बुरी आदत थी, और वो क्या कि नाम बदलने की, लफ्ज बिगाड़ते थे, हित्ता को इन्होंने कर दिया खिंता, खिंता कहते हैं दाने को, बाली, ग्रेन, वीट, दिमाग में सवार ये था कि हमें अब जमीन से उगने वाला कुछ चाहिए, क्योंकि मन सलवा खा के थक गए, अगले सबक में बात होगी। अल्लाह कहते हैं कि हमने तुमको निकाला और तुम वहां गए और अब मुहसिनों को ज्यादा देंगे, लेकिन फबद्दललजीना ज़लमु क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम, बस बदल दी उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया बात सिवाय उसके जो उनको कही गई थी। क्या थी बात, कहो क्या, हित्ता तुन, मतलब क्या था, ए अल्लाह हमारे गुनाह झाड़ दे, इन्होंने मजाक बना लिया, खिंतातुन खिंतातुन, दाना बाली बाली। अल्लाह कहते फंजलना अललजीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस्समाई बिमा कानू यफ़सकून यफ़सकून, इन जालिमों ने बात बदल दी जो इनको कही गई थी, तो आसमान से हमने इन पर रिज़्ज़ भेजा, रिज़्ज़ के ऐसा अज़ाब जिसको सुनकर घिन आए, नापाक سین ہے تو ناپاک ہے، تو رجز عذاب ہے، کراہت والا عذاب. کہتا ہے کہ تاؤن کی بیماری پھیل گئی اور اس طرح ان کی حالت ہو گئی کہ لوگوں کو ان کے اوپر ترس آنے کی بجائے ان کے اوپر رحم آتا ہے. کیا رویے سمجھ آ رہے ہیں قوموں کے، بار بار ایک ہی کہانی، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی مدد کبھی نقصان، کبھی کچھ. یعنی اس طرح یہ قوم بھٹکتی بھٹکتی یہاں پہنچ گئی کہ اللہ نے ان کو ملک شام دیا. یہاں آ کے انہوں نے کیا کیا، آپ کو اگلے سبق سے پہلے سناؤں گی کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو اس کے آگے کیا ہوا. لیکن سب ہم اپنے دامن میں جھانکے. آج ہم دوسروں کو اپنی بربادیوں اور اپنی تباہیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو ہمارے اپنے کام کچھ غلط نہیں ہیں، کچھ برے نہیں، اللہ کچھ کام ہمارے ان سے مختلف نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ تم اپنے پچھلوں کے قدموں پہ یوں چلو گے کہ ان کے جوتے پہ اپنا جوتا رکھو گے، جو وہ کرتے ہیں تم بھی وہی کرو گے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی کھو ایک جانور ہوتا ہے اس کی بل میں گھسے گا نا تو تم بھی گھس جاؤ گے. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا نا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے، تو آپ نے کہا اور نہیں تو کون. کیا جمعت مسلمہ دیکھیے بھیڑ چال ہے. ہم سب کے لیے اس پورے سبق میں خلاصہ کیا ملتا ہے کہ جب فتح اور نصرت سے ہم کنار کریں تو کسی تکبر اور غرور کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے. عجز انکساری سے اللہ کے آگے جھکے. 14 اگست کو آپ ساری رات اللہ سے رو کے دعائیں مانگیں، نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، پاکستان کی کامیابی اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے دن راتوں کو اللہ سے دعائیں کریں اور دن میں کوشش کریں. چھوڑیں ساری سیاست کو، پہلے علم سیکھیں، پہلے دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. آپ جب دیکھیے موسیٰ جب وہاں آ گئے تو سب سے پہلا کام کیا تھا، کتاب لینے گئے. پاکستان جب بنا تھا نا 14 اگست 1947، اس وقت پہلا کرنے کا کام ہی یہ تھا کہ چند لوگ ہیں وہ کام سنبھالے اور پوری امت کو کتاب سے جوڑ دے. آج حالات فرق ہوتے، کتنی جانی مالی قربانیاں. اس وقت ہم کیا بولتے تھے، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا. لیکن آج تک بتائیے کیا ہم نے وہ قبریں بھی توڑی جو شرک کے ماجگا بنی ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ بھی عمل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ تو اس کا اگلا حصہ ہے. اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح کیا تھا سب سے پہلے آپ نے حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا کہ مکہ کے ارد گرد جتنی اونچی قبریں ان کو سب برابر کر دو، بت توڑ دو، ان کی درگاہیں توڑ دو. جب تک شرک کے اثار نہیں ختم ہوں گے آپ کس اسلام کی بات کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. یہ تھا آج کا سبق. آپ یہ